ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
गोपा ऊंचू है
गोपा ऊचू राम राम महाबाहो कृष्ण दुष्ट निवारण एषा वै बाधते छुन्नः तच्छान्तिं कर्तुमर्हतः। श्री शुक उवाच इति विज्ञापितो गोपैः भगवान् जगदीश्वरः भक्तायः विप्रभार्यायः प्रसीद निदमब्रवीत्। प्रयात देवयजनम् ब्राह्मणा ब्रह्मवादिनः सत्रमाङ्गिरसं नाम यासते स्वर्गकाम्यया तत्र गत्वौ धनं गोपा याचतास्मद्विसर्जितः कीर्तयन्तो भगवतः आर्जस्य मम चाभिधाम। इत्यादिष्टा भगवता गत्वा याचन्त ते तथा कृताञ्जलिपुटा विप्रान् दण्डवत् पतिता भुवि। श्री गोपा ऊचुः
गोपो ने कहा
रामा
हे राम
रामा हे राम महावीरज महान शक्ति वाले महान वीर महाबाहु का भी यही अर्थ हुआ। कृष्णा हे कृष्णा दुष्ट निवारण दुष्टों का विनाश करने वाले ऐसा यह वही निश्चित बाधते दुख दे रही है बाधा दे रही है छूत भूख नहा हम लोगों को तत् उसकी शांति शांति समन या विनाश कर्तुं करने के अर्हतः तुम दोनों योग्य हो। हे राम वास्तव में उच्चारण तो करेंगे राम राम, राम नहीं करेंगे, लेकिन अगर लोक में चलता हे राम हे राम हे महान वीरता वाले शक्ति वाले हे राम हे कृष्णा तुम दुष्टों का विनाश करने वाले हो, यह महादुष्टा भूख हमें सता रही है, तुम दोनों इसको शांत करो, भूख को मारो। इस तरह से गोपों ने आकर श्री कृष्ण और बलराम जी से इस बात को कहा। तो हरीश्वरी जी इस पर एक श्लोक लिखे हैं कि जिस भूख को शांत करने के लिए विरक्त मुनिजन भी महात्मा लोग भी वन में जहां तहां निस्तंद्र प्रयास करते रहते हैं, चाहे पानी पी करके, चाहे कंदमूल खा करके या तृण चबा करके, जैसे भी हो, मुनि लोग भी इस भूख से परेशान रहते हैं और इसके लिए उपाय करते हैं, परंतु इसका पूरा पूरा नाश कोई नहीं कर सका आज तक। भूख का पूरा विनाश कोई नहीं कर सका। थोड़े काल के लिए यह शांत हो जाती है, कुछ आसन कर लेते हैं, नाश्ता, नाश्ता का मतलब होता है नहीं भोजन, पर भोजन भी और नहीं भोजन, न आस्ता, आस्ता माने भोजन, न आस्ता, पूरा भोजन नहीं है लेकिन कुछ भोजन है जो नाश्ता कहते हैं, जो संस्कृत शब्द है, और पर नाश्ता मान लीजिए कोई कर लिया तब तक तो अभी लंच प्रतीक्षा कर रहा है, फास्ट को ब्रेक किया, ब्रेकफास्ट तब तक लंच, लंच के बाद तब तक रात होते होते डिनर। ये तीन तीन बार खाने की आदत सभी मनुष्यों को है। इसका अर्थ है कि शांत, इसका मरण तो होता नहीं है भूख का। आदमी कहता है कि हमारी भूख मर गई, मर नहीं गई, सो गई या चाहे चुपचाप बैठी है, फिर जगेगी। तो सारा संसार इस भूख की ज्वाला से सताया जाता है, भूख उत्पन्न हो जाती है तो कोई क्रियाएं नहीं होती हैं, सब क्रियाएं ठप हो जाती हैं, ऑफिस भी बंद कर दिया जाता है, भोजन करने के बाद तब फिर ऑफिस खुलता है, चाहे कोई खेती कर रहा हो, व्यापार कर रहा हो, खाना सबके लिए जरूरी है। तो ये गोप कृष्ण बलराम से इस भूख को शांत करने के लिए कह रहे हैं। तो क्षंतिम कर तुम रहा था, आज तक कोई दूसरा व्यक्ति भूख को नष्ट करने में समर्थ नहीं हुआ है, इनके कहने का आशय ये है। हरीश्वरी जी कहते हैं तुम दोनों इसका नाश कर सकते हो और कोई नहीं नाश कर सका। थोड़े देर के लिए इसको सुला देना, निष्क्रिय कर देना, बस इतना ही किया है लोगों ने, लेकिन जान से मार देना भूख को ये कोई नहीं किया है। तो तुम दोनों इसको शांत कर सकते हो, इसका समन कर सकते हो। कर्तुम अर्हता हो, ये द्विवचन क्रिया है, तुम दोनों समर्थ हो, क्योंकि एक को कह रहे हैं तुम महावीर, महान शक्तिशाली हो, महान बाहु हो, और दूसरे को कह रहे हैं तुम दुष्टों का विनाश करने वाले हो। तो भगवान मानो पूछते हैं तो ये भूख दुष्ट है क्या? दुष्ट निबरहण, निबरहण का अर्थ है फिर गुजारा न होने देना, स्थिर न होने देना, समाप्त कर देना, जो दुष्टों को समाप्त कर देते हैं निर्वाह नहीं होता है दुष्टों का, उनको दुष्ट निवारणक कहते हैं, दुष्टों का वध करने वाले। तो ये यह भी एक महादुष्ट है, गोपों के कहने का आशय था। तो वे ये भी कहते हैं कि नैसा क्षुद वैरी रूप जद उदर गतया स्थियते स्मासु नित्यम। यह क्षुद यह भूख है अस्मासु नित्यम स्थियते, हमारे बीच ही रहती है, पेट में ही रहती है और रह रहकर उत्पाद करना चालू करती है। तो इसको कुछ देते रहिए तब तो कोई उत्पाद नहीं करती है और बीच बीच में उत्पन्न होकर के उत्पाद करने लगती है। तो हमारे भीतर रोज रहती है, नित्यम अस्मासु स्थियते, और वो भी उदर गतया, उदर में रहती है। और यह जब तृप्त होती है, जब तृप्तया पुष्टि भाज वयमपि, जब यह तृप्त होती है तो हम भी पुष्टि पात्र हो जाते हैं, हमको भी पोषण मिलता है। जब भूख शांत होती है, संतुष्ट होती है, तो बल बढ़ता है ना शरीर में। तो गोप यही कह रहे हैं कि हम समझ नहीं पा रहे हैं कि यह शत्रु है कि मित्र है, ये भूख है। ये शांत होती है तो हमारा भी पोषण होता है, काम करने की शक्ति आ जाती है, रहती है उदर में। तो न ऐसा क्षुद बैरी रूपा, हम एक दृष्टि से देखते हैं तो यह भूख बैरी नहीं है। क्यों? कि जब उदर गतः, एक तो पेट में रहती है भूख उदर में, और दूसरे अस्मासु नित्यम स्थियते, और जब तुष्ट पुष्टि भाजो वयम अपि च सदा या जगत वृत्ति हेतु, और जिसके संतुष्ट होने पर हमको भी बल मिलता है, पोषण मिलता है, और जगत वृत्ति हेतु संसार में जो भी काम धंधा हो रहा है, हलचल है, सबका एक कारण है। अगर इसको भोजन दे दिया जाए तो ठीक है, काम कीजिए। तो एक दृष्टि से यह वैरी नहीं है, मित्री भूता, परंतु दूसरी दृष्टि से हम देखते हैं, यह हरिश्री जी अर्थ कर रहे हैं, हम दूसरी दृष्टि से देखते हैं, मित्री भूता अपि सा अस्मिन् जद अदय हृदय पीड़यत अस्त तंद्रम। लेकिन मित्री भूता हो करके, मित्र बन करके भी यह अदय हृदय, ये निर्दय हृदय पीड़यती अस्त तंद्रम, ये निरंतर पीड़ा देती रहती है। निरंतर का मतलब है रोज रोज बनाओ खाओ बनाओ खाओ, ये रोज रोज पीड़ा देती है। तत् तत्वज्ञो बलह स्याद जदुपति अथवा इति आशय तौ समुच। इसके रहस्य कोई कि है क्या, मित्र है कि शत्रु है, इसके तत्व को बलराम जानते हैं और नहीं तो जदुपति जानते हैं, श्रीकृष्ण जानते हैं। इसीलिए दोनों से वे लोग इसके विषय में निवेदन कर रहे हैं कि ये भूख हमें सता रही है और तुम दोनों विचार करो, इसको इसको शांत करो। हरिश्री जी जो ये तात्पर्य लिख रहे हैं, बिल्कुल फैक्ट है कि आखिर उन्हीं दोनों से क्यों कहे और दूसरे से क्यों नहीं कहे कि भूख सता रही है। और भी तो उसमें गोप थे और बहुत से लोग थे तो कहना चाहिए, लेकिन वास्तव में भूख के तत्व को या तो बलराम जी जानते हैं या जदुपति श्री कृष्ण जानते हैं, अतः उन्हीं दोनों से भूख का विवरण प्रस्तुत कर रहे हैं। तो छांतिम कर तुम्हार होता है, इसका प्रकट अर्थ है कि कुछ भोजन की व्यवस्था करो, तुम दोनों शक्तिशाली हो और मुख्य रूप से इस भूख को मारो, ये कह रहे। तुम एक महाबाहु है और एक दुष्ट निवारण है। हरिश्री जी ये भी कहते हैं कि अनेक बार तुम दोनों ने दुष्टों का वध किया है, दमन किया है, दो बार आग लगी थी, तीसरी बार आग लगी है जाठर अग्नि, वो कहते हैं हरिश्री जी। ये जाठर जो है वो दोनों से क्रूर है। एक बार जमुना के उपवन में आग लगी थी, काली दमन के दिन रात में आग लगी थी, और एक दिन मुंजाटवी में। तो हे श्री कृष्ण, तुमने दोनों अग्नियों का शमन कर दिया है, वो तो शांत हो गई, अब इस जठराग्नि का शमन करो। तो हमेशा अग्नि का शमन करते हो, पेट में भूख लगती है तो लगता है कि वास्तव में आग लग गई है ना? पेट में भी अब अग्नि है जो भोजन को जीर्ण करती है, जो अग्नि जीर्ण करता है भोजन को, ये जठरानल है। और दो बार तो दवानल पिए श्री कृष्ण, अब ये बच्चे जठरानल के शांति के लिए विनय कर रहे हैं गोपगण, भगवान के मित्रगण। तो ऐसा बाधते छुन्ना श्री बलराम जी के लिए राम राम दो बार क्यों कह रहे हैं, इस पर श्रील सनातन गोस्वामी पाद जी लिखते हैं, रमयति सर्वानेव सुखयति इति राम। सर्वानेव रमयति, जो सबको सुखी करते हैं, सबको सुख देते हैं, सबको रमाते हैं, उनको राम कहते हैं। रमयति सर्वान सुखयति इति राम, तत्संबोधनम अस्मानपि सुखय इति भाव। जब तुम सबको रमाते हो, सबको सुखी करते हो, तो हमको भी सुखी करो, अस्मानपि सुखय इति भाव, इस संबोधन में छिपा, हमको भी सुखी करो। विप्सा क्षुधार्त्या, दो बार क्यों कह रहे हैं राम राम? भूख की ज्वाला से आर्त होकर राम राम हमारी भूख खत्म करो, इस तरह से कह रहे हैं। हे महाबाहो इति सामर्थ्य विशेषम तत्र सूचयन्ति, इस भूख का नाश करने में तुम समर्थ हो, इसी के लिए उनके सामर्थ्य को सूचित कर रहे हैं महाबाहु कहकर। यह महावीर्य इति पाठे स एव अर्थ, महावीर्य पाठ भी हो तो अर्थ वही है। कृष्ण हे परमानंद घन मूर्ते, भगवान श्री कृष्ण परमानंद की घनीभूत मूर्ति है, सुख की मूर्ति है, इसलिए वो कृष्ण कहते हैं। कृष्ण हे परमानंद घन मूर्ते, अतः त्वदीया नाम शुद्ध दुखम अयुक्तम इति भाव। श्री कृष्ण को संबोधित कर रहे हैं कि तुम आनंद के मूर्तिमान स्वरूप हो, परमानंद घन हो, अतः तुम्हारे भक्तों को, तुम्हारे मित्रों को शुद्ध के भूख के दुख का अनुभव नहीं होना चाहिए, अयुक्त है। अगर परमानंद घन का आदमी भगवान का आदमी अगर दुख में पड़े तो यह अयुक्त है, योग्य नहीं है, ठीक नहीं है। तो तुम हमारा दुख दूर करो, ये भूख का जो दुख है इसको दूर करो। और विशेषतश्च हे दुष्ट निवरहण इति छुत खलु वै मनुष्यस्य भ्रातृव्य इति श्रुते। श्रुति कहती है, वेद कहता है कि ये भूख जो है मनुष्य का शत्रु है। तो ऐसा कह देने से स्पष्ट हो गया, यह छूत मतलब यह शत्रु, और तुम दुष्टों का वध करने वाले हो, अतः यह दुष्टता कर रही है, भूख है, इसको मारो। भूख को मनुष्यों का शत्रु क्यों कहा गया है? ये वेद कह रहा है, इसलिए कि सब प्रकार के प्रवृत्ति को, क्रियाशीलता को यह खंडित कर देती है। जब यह जोर से उग जाती है पेट में तो फिर कोई काम धंधा नहीं हो पाता है। तो प्रवृत्ति को, क्रियाकलाप को रोक देना, किसी को पंगु बना देना या अंधा बना देना, एक बार हमने सुना था डायरेक्ट हमसे ही कहते हुए एक व्यक्ति को बहुत बरस पहले जब हम लोग गाय चला रहे थे तो एक लड़का कहता है हम पानी पीने जा रहे हैं घर पर पानी पीने जा रहे हैं पानी पीने जा रहे हैं तो गंगा जी के तरफ हाथ उठाकर कहते हैं कि हमको प्यास लगी है। तो गंगा जी ऊपर रहती है आकाश गंगा मंदाकिनी, तो गंगा जी के तरफ ऊपर पांव उठाकर कहते हैं तो मैं कह दिया तुम झूठ बोल रहे हो, केवल गुचारण से तंग होकर के घर जाना चाहते हैं। तो वो कहता है नहीं हमको धुंधलावन दिखाई दे रहा है दिखाई नहीं पड़ रहा है अच्छा से, प्यास के मारे धुंधलापन दिख रहा है। किशोर अवस्था का लड़का और गौरे धुंधलापन दिखाई दे रहा है। तो ये भूख जो है मनुष्यों को अंधा बना देती है, दिखाई नहीं पड़ रहा है, चला नहीं जाता है पैर से, हाथ से कुछ काम नहीं होता है, खड़ा होने में भी दिक्कत होती है। तो दुश्मन है कि नहीं भूख, बताइए, भूख दुश्मन है ना, लेकिन मित्र भी है। अगर आज के जमाने में किसी को भूख न लगे और खाए न तो ऐसे ही मर जाएगा। और लोग डॉक्टर लोग कहते हैं कि 100 मंदाग्नि हो गई, मंदाग्नि हो गई। भूख अच्छा लगे तो अच्छा माना जाता है, भूख लगने पर आदमी खा लेता है तो इसके बाद ताजा हो जाता है, काम धंधा करता है। तो इस तरह से मित्र भी है। तो शास्त्र कहता है कि यह भूख शत्रु है। अब बच्चों का क्या हो रहा था वहां पर गोपों का, कि ऐसा कह करके, ऐसा का अर्थ अधुना साक्षात, देखो दोनों, देखो सामने ये भूख बाधित कर रही है, ऐसा यह अथवा मुख सोसादी लक्षण ही प्रत्यक्षा, अथवा बच्चे दिखा रहे हैं कि ये भूख जब लगते तो मुख को सुखा देती है, भूख कैसे लगती है तो मुख सूख जाता है, बहुत से लक्षण होते हैं, शरीर शिथिल होता है। तो ये कहकर देखो सामने ये भूख हमको बाधित कर रही है। और हथ इति विनयोक्त्या अवश्य कृत्यता बोधत, और तुम दोनों योग्य हो इस भूख का निवारण करने के लिए, इसका शमन करने के लिए, ये विनय उक्ति कर रहे हैं, विनय का वचन बोल रहे हैं। और अवश्य कृत्यता इति, तुम दोनों योग्य हो, हम तुम दोनों के मनुष्य हैं, साथ आदमी हैं, हम तुम दोनों के ग्रुप के हैं, इसीलिए तुम्हारा ये अवश्य कर्तव्य है कि हमारी भूख बुझाओ। कृष्ण भगवान दोनों को कह रहे हैं कि तुम अपने कर्तव्य का पालन करो, ये तुम्हारा कर्तव्य है हमारी भूख बुझाना। और वास्तव में ये सत्य है, वो तो विश्वंभर हैं, यही दोनों भाई दुनिया की भूख मिटाते हैं, नहीं तो कौन मिटाने वाला है। ये पृथ्वी में अन्न आदि दे करके, फल दे करके, यही दोनों तो सब कर रहे हैं, भगवान ही तो भूख मिटा रहे हैं। तो तुम इसको करो, ये तुम्हारे लिए आवश्यक है, तुम्हारा धर्म है। दोनों भाइयों से समान रूप से निवेदन कर रहे हैं, लेकिन पहले श्रीराम को निवेदित किए, बलराम जी को, क्यों? इस पर श्रीपाद सनातन गोस्वामी कहते हैं कि पहले तो दोनों को संबोधन कर रहे हैं तो स्नेह विशेषण तय और अभेदार, स्नेह विशेष से दोनों में भेद नहीं है, श्री कृष्ण और बलराम एक ही हैं, तो दोनों से प्रार्थना की। तत्र लोक व्यवहार आदि अपेक्षा आदौ ज्येष्ठस्य प्रसंबोधन, लोक व्यवहार से सबसे पहले जेठ भाई का संबोधन किए। लोक व्यवहार बच्चे जानते हैं ना, यदि वे जानते हैं कि श्री कृष्ण साक्षात परमेश्वर है, भगवान है, शक्ति में सब तरह से श्रेष्ठ है बलराम जी से, लेकिन लोक देख कर चलना चाहिए ना, इसलिए लोक व्यवहार की अपेक्षा से पहले श्री राम को संबोधित किए। अथवा रामस्य रामस्य अनादरेण कृष्ण प्रीत्य संपत्त। यदि राम का आदर नहीं किया जाता, बलराम जी का आदर नहीं किया जाता, तो कृष्ण प्रीति असंपत्त, कृष्ण प्रसन्न नहीं होते। इसलिए कृष्ण की प्रसन्नता के लिए पहले बलराम जी का को आदर दे रहे हैं, पहले उनको कह रहे हैं। अतएव तम प्रति द्विसंबोधनम च, यही आदर देने के लिए श्री बलराम जी के प्रति दो बार संबोधन किए, राम राम, दो समूह, हे राम संबोधन किए। तो इस तरह से जब बच्चों ने निवेदन किया, बच्चों से तात्पर्य हमारे पूरे गोप मंडली से है, उसमें कुछ लोग बड़े बड़े भी थे, उन्होंने निवेदन किया, तब क्या किए श्री कृष्ण और बलराम, इस पर श्रील सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को संबोधित करके कथा कहते हैं। इति विज्ञापितो गोपैः भगवान देवकी सुतः भक्ताया विप्रभार्याया प्रसीदन इदम अब्रवीत। तो श्री सुख कथयामास, श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, ये कौन लिख रहा है कि श्री सुख उवाच, ये कौन कह रहा है? ये सूत गोस्वामी बोल रहे हैं, ये दो शब्द श्री सुख उवाच, श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा। क्या कहा? गोपै ही इति, इति का अर्थ पूर्वोक्त प्रकारेण, जैसा पहले कहा गया पूर्वोक्त प्रकार से, पूर्व उक्त प्रकार पहले जैसा कहा गया है, इस तरह से गोपै ही विज्ञापितः, गोपों के द्वारा जब भगवान से ये बात कही गई, एक वचन नहीं है वर्णन श्री कृष्ण के लिए, गोपै विज्ञापित, गोपों के द्वारा जब यह बात कही गई, तो भगवान देवकी सुता है या जगदीश्वर है, ये पाठ भेद है। देवकी से जिनका जन्म हुआ है वे भगवान श्री कृष्ण सर्वशक्तिमान है, भगवान कह दिया गया तो स्पष्ट हो गया, जो सर्वशक्तिमान है, अपनी भक्त विप्र पत्नी के प्रति वे प्रसन्न थे, और उसी प्रसन्नता से उन पर अनुग्रह करने के लिए इदम अब्रवीत, यह बोले, वो आगे भगवान बोल रहे हैं। इति अनेन प्रकारेण, इस प्रकार से भगवान बोले, अनेन प्रकारेण जो आगे कहा जाएगा, इदम वा पूर्वोक्तम विशेषण पूर्वोक्तम, और इदम इति का यहां अर्थ है अनेन प्रकारेण अथवा इदम, इदम का अर्थ है कि जैसे पहले कहा गया, जैसे बच्चों ने गोपों ने पहले निवेदन किया, तो उस यह अर्थ है कि इस प्रकार ज्ञापित स्वयं जगदीश्वर सर्वशक्तिमान अपि इदम वक्षमाणम अब्रवीत। क्या बात है भाई, कौन बोल रहा है, बाहर बोल रहा है कि भीतर बोल रहा है, हैं? तो उस साइड आप लोग नहीं मना कर सकते हैं, कोई बोल नहीं सकता है, बोलने पर खड़ा कर दिया जाएगा। तो इदम अब्रवीत, भगवान यह बोले, भगवान श्री कृष्ण के लिए श्री सुखदेव गोस्वामी शब्द दे रहे हैं। देवकी सुता, देवकी से जिनका जन्म हुआ है ये भगवान, परम कृपालु, परम सामर्थ्य युक्त, और जगदीश्वर अगर पाठ भेद है तो सर्वशक्तिमान होते हुए भी जगत के ईश्वर जो सबको भोजन देते हैं, सबको खिलाते हैं, और सबको कपड़ा, सबको आवास, सब सारी व्यवस्था किए हैं, जो सृष्टि के, इस विश्व के नियंता हैं, वे भगवान इस प्रकार बोले, इनकी लीला देखिए। और भगवान के इस प्रकार के वचन कहने में आशय क्या था, क्या अभिप्राय था, आगे जो वचन कहेंगे क्या अभिप्राय था। विप्राया भक्ताया विप्रभार्याया प्रसीदन, जो ब्राह्मण यज्ञ कर रहे थे थोड़ी ही दूर पर, तो उनकी पत्नियों के प्रति भगवान पूर्ण प्रसन्न थे। यहां एक वचन में प्रयोग किया गया है भक्ताया विप्रभार्याया, तो श्रीपाद श्रीधर स्वामी कहते हैं कि भक्ताया ये शब्द सायुज्या, शब्द सायुज्याभिप्रायण, तुरंत ही भगवान से भेंट होने वाली है। इस अभिप्राय से सारे समाज को, सारे समस्त विप्र पत्नियों को एक वचन में कह रहे हैं, सबके साथ एक ही बार भेंट होगी, आएंगे भगवान के पास। तो इसीलिए अथवा जातव एकत्वम, समस्त स्त्री जाति के लिए, ब्राह्मण पत्नियों के लिए एक वचन का प्रयोग कर रहे हैं। तो श्री भगवान विप्रभार्याया विप्रभार्याओं पर, ब्राह्मण की पत्नियों पर बहुत प्रसन्न थे। क्यों प्रसन्न थे? क्यों भक्ताया, वो वास्तव में भगवान के प्रति परम भक्ति से युक्त थे, बहुत प्रेम करते थे। ये भूख का निवेदन कर रहे हैं, भूख बुझाने के लिए कहते हैं कुछ उपाय करो, और भगवान के विषय में कहा जा रहा है कि वे यज्ञ पत्नियों पर बहुत प्रसन्न थे, अतः उन पर अनुग्रह करने के लिए गोपों से यह वचन बोले। तो मन में ब्राह्मण की पत्नियों के प्रति चिंता है भगवान की, चिंता मतलब उन पर प्रेम है, और उन पर कृपा करने के लिए, उनको अनुग्रह करने के लिए, उनको अपना बनाने के लिए वो गोपों से यह वचन बोले। इस पर हरिश्री जी कहते हैं, क्षुधो निर्वारणार्थम कृत बहुल यत्ना ब्रज जनाः क्षुधार्थोपि श्रीशो द्विजवर वधु क्षेम दृगभूत स्फुटम तद्वात्सल्यम स्वकम अकृत भूमौ जदनिशम नमे क्षुधवा तिल्यवा निज जन परित्राण समय। देखिये, भूख सबको लगी है, गोपों को भूख लगी है, भगवान के मित्रों को, और भगवान को भी भूख लगी है, श्री बलराम जी को भी लगी है, क्योंकि एक साथ वो लोग खाए थे, जब खाना तो पीछे भूख लगी है, तो समभाव से सबको लगी है। परंतु वे ब्रजवासी तो भूख से व्याकुल होकर के अनेक जत्न कर रहे थे, कृष्ण बलराम से विनय कर रहे थे, हमको खाने को चाहिए, हमको खाने को चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। श्री कृष्ण को भी भूख है, क्षुधार्थोपि श्रीश, श्रीश भी क्षुधार्थ हैं, क्षुधार्थ हैं। श्रीश मतलब श्री के ईश, लक्ष्मी जी के पति, भगवान भी भूखे हैं, श्रीश भी भूखे हैं, फिर भी द्विजवर वधु क्षेम दृग अभूत, फिर भी भगवान की दृष्टि है उन द्विज श्रेष्ठों की पत्नियों का हित करना, उनको सुख देना। अपने खाने के फेर में भगवान नहीं है, भूख लगी है, लेकिन फिर भी द्विजवर वधु, द्विजवरों के वधु पत्नियों के प्रति क्षेम दृक अभूत, उनका क्षेम कैसे होगा, उनका परम हित कैसे होगा, उनका मनोरथ कैसे पूरा होगा, भगवान की दृष्टि इसी पर है। स्फुटम तद्वात्सल्यम स्वकम अकृत भूमौ जदनिशम नमे क्षुधवा तृढ़वा निर्जन परित्राण समय। भगवान का वात्सल्य अपने भक्तों के प्रति बिल्कुल प्रकट हो गया, स्वयं भूख लगी है लेकिन भूख की कोई चिंता नहीं है, उनका वात्सल्य प्रकट हो गया, और भगवान ने यह दिखाया संसार में कि निज जन परित्राण समय, अपने भक्तों के अपने प्रेमियों के परित्राण के समय मुझे न भूख लगती है न प्यास लगती है, न मैं छुद्वा त्रिड़वा। यह बहुत महत्वपूर्ण बात कही जा रही है कि निवेदन भूख शांति के लिए किया जा रहा है, भगवान को भी भूख है, श्री बलराम जी को भी भूख है, लेकिन उस समय भगवान को खाने पर ध्यान नहीं है। ऐसे ये है कि इनको भोजन मिल जाए, लेकिन भक्ताया विप्र भार्या या प्रसीदन इधर न ब्रवीत, द्विज पत्नियों के मंगल की काम मंगल पर ध्यान है कि उनका मनोरथ पूरा होना चाहिए, उनको सुख मिलना चाहिए, ये भगवान का स्वभाव है। तो हरिश्वर जी कहते हैं कि भगवान को अपने भक्तों के रक्षा के समय भूख प्यास का ध्यान नहीं आता है कभी भी। स्फुटम तद्वात्सल्यम स्वकम अकृत भूमौ जद अनिशम नमे छुद्वा त्रिड़वा निजन परित्राण समझ। तो भगवान बोले, अभिप्राय समझना चाहिए, यही मुख्य है कथा। भगवान बोले गोपों से तो उनका अभिप्राय क्या था? अभिप्राय था यज्ञ पत्नियों पर अनुग्रह करना, उनका मनोरथ पूरा करना, उनके प्रति अपना प्रेम प्रकट करना, मुख्य उद्देश्य भगवान का ये था। और इसी के लिए भगवान ने गोपों में भूख उत्पन्न किया था, यही उद्देश्य था। लक्ष्मीपति भगवान जो सबका पालन कई तरह से कर रहे हैं, क्या उस समय भूख नहीं बुझा सकते थे? कोई फल या कोई चीज उत्पन्न नहीं कर सकते थे? कहीं भेजने की क्या जरूरत थी कि जाओ यज्ञ हो रहा है वहां से भात मांग लाओ? और यह भी जानते थे सर्वांतर जामी भगवान है कि ये ब्राह्मण इनको भोजन नहीं देंगे, फिर भी ब्राह्मणों के पास भेज रहे हैं। एक अजीब भगवान की लीला है, जानते थे कि वे नहीं देंगे, पर फिर भी भगवान को तो कृपा करनी थी उनके पत्नियों पर, तो भगवान इसको दिखा रहे हैं। वो भी बात आएगी। हरिश्वर जी बताते हैं कि भगवान जानते थे कि वे नहीं देंगे, फिर भी उन्हें के पास क्यों भेजे? इति विज्ञापितो गोपैर भगवान जगदीश्वर भक्ताया विप्रभार्याया प्रसीदन इदम अब्रवीत। भगवान भेज रहे हैं, जगदीश्वर हैं, तो विप्र भार्याओं पर प्रसन्न होकर के भगवान ये बात बोले। प्रयात देव जजनम ब्राह्मणा ब्रह्मवादिनः ब्राह्मणा ब्रह्मवादिनः सत्रमांगिरसम नाम ह्यासते स्वर्ग काम्यया। हे गोपाह, इसमें छिपा हुआ है, भगवान ने कहा, दोनों भाइयों से निवेदन किया गया है, श्री बलराम जी से और श्री कृष्ण से, कि भूख शांति का उपाय करो। तो श्री बलराम जी नहीं बोले, जबकि उनके लिए दो बार संबोधन किया है गोपो ने, पर वे क्या कारण था कि नहीं बोले वो भी बात बताई जा रही है। श्री बलराम जी क्यों नहीं बोले? श्री कृष्ण बोले। सुखदेव गोस्वामी यही कहते हैं कि भगवान देवकी सुतः, ये देवकी के पुत्र तो दोनों ही हैं, लेकिन लोक में प्रकट एक रोहिणी के पुत्र हैं, श्री कृष्ण देवकी के पुत्र हैं। देवकी के गर्भ में श्री बलराम जी भी थे, एक ही शरीर से दो माताओं के पुत्र थे। ये भागवत के प्रथम अध्याय में ही प्रश्न है महाराज परीक्षित का, दशम स्कंध के प्रथम अध्याय। तो श्री भगवान भेज रहे हैं। प्रयात देव यजनम, हे गोपाह, देव यजनम प्रयात। बेचारे भूख से छटपटा रहे हैं, तो भगवान बोलते हैं यज्ञ मंडप में जाओ। यहां से दिखाई, वहां से दिखाई दे रहा था वो साफ, बहुत दूर नहीं था, तो भगवान ने संकेत किया, प्रयात देव यजनम ऐसे कहा, तो यज्ञ मंडप यज्ञ भूमि में जाओ। क्यों वहां क्यों जाए? भगवान के सखा तो भगवान के समान हैं, बराबर के हैं, तो वो पूछते हैं तुमसे हम भूख शांति के लिए कह रहे हैं कि हमको कथा सुनने के लिए भेज रहे हो? यज्ञ में जाओ। तो भगवान कहे सुनो सुनो, ब्रह्मवादिन ब्राह्मणा स्वर्ग काम्यया आसते ही। वहां पर यज्ञ मंडप में ब्रह्मवादी ब्राह्मण गण हैं और क्या कर रहे हैं, किस किस कार्य में बैठे हैं? तो आंगिरसम सत्रम आसते। आंगिरस नामक यज्ञ वे कर रहे हैं। वास्तव में उसका नाम था बृहस्पति सौ यज्ञ, आंगिरा जी के पुत्र बृहस्पति। आंगिरस सत्रम, सत्रम का अर्थ होता है यज्ञ सेशन। तो यज्ञ में बैठे हैं, बहुत दिन यज्ञ चलेगा और वो भी फर्स्ट क्लास के ब्राह्मण हैं, ब्रह्मवादी हैं, वेद के अनुसार चलते हैं सब। ब्रह्म मतलब वेद, वादी। श्रीपा सनातन गोस्वामी अर्थ करते हैं जद्वा ब्रह्मणी वेद ते न वादशीला, अथवा अ लगाएंगे दोनों को संयुक्त है, ब्राह्मणा अब्रह्मवादी ना। यही भगवान के मुख से निकल रहा है, वे वेद के अनुसार नहीं चल रहे हैं, अर्थात वेद का सार नहीं जानते। लेकिन इसका यही अर्थ करना ठीक होगा कि ब्रह्मवादी न, अतएव स्वर्ग काम्या सत्रम यज्ञम आसते अनुतिष्ठन्ति इति अर्थ। स्वर्ग की कामना से, स्वर्ग जाने की कामना से वे यज्ञ कर रहे हैं। कितना अच्छा उद्देश्य है, शुभ गति पाने के लिए यज्ञ कर रहे हैं। अनुतिष्ठन्ति इति अर्थ ही निश्चितम। और श्रीपाद विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, सनातन गोस्वामी कहते हैं, एक अर्थ करते हैं कि ते ब्रह्मवादी न, केवल वेद के श्लोक बोलते हैं वो लोग, न तो वेदार्थ तत्वविद इत्यर्थ। वेद के अर्थ को ठीक से नहीं जान, तात्पर्य नहीं जानते हैं, लेकिन जब देखा जाए तो वेद का श्लोक ही बोलते रहते हैं। हवन करने में भी तो वेद के श्लोक ही बोलते हैं, सब तो ब्रह्मवादी कहा गया, वेदवादी। ऐसे गोपों के लिए भगवान यही अर्थ कर रहे हैं कि परम पवित्र हैं, पावन वैष्णव हैं, वेद केवल बोलते हैं, वेद मंत्रों के अनुसार उनका जीवन चलता है, शुद्ध है। लेकिन मन में भगवान ये भी अर्थ रख रहे हैं कि वेद के तत्व को नहीं जानते हैं, मुख से वेद का उच्चारण करते रहते हैं लेकिन वेद के तात्पर्य को नहीं जानते, ब्रह्मवाद। तो आंगिरसम सत्रम नाम ही आसते। यज्ञ में बैठे हैं, बहुत अच्छा यज्ञ है, तब हमको क्यों भेज रहे हो? वे लोग तो यज्ञ कर रहे हैं। तो मान लीजिए गोप कहेंगे तब हमको क्या, कथा सुनने के लिए या हवन कराने के लिए क्या भेज रहे हो? नहीं सुनो, भगवान कहते हैं सम तत्र गत्वा, वहां जाकर ओदनम याचत। हे गोपा, हे गोपालो सुनो, वहां जाकर के पहले तो जाओ और जाकर के ओदनम भक्तम याचत, वहां जाकर भात मांगो। मांग लोग दे देंगे कुछ भात और खा लोगे। भात देने का मतलब कि दाल और सब्जी देंगे ही, ऐसा मतलब नहीं था। लेकिन भगवान चूंकि वो बहुत बड़े लोग हैं, बहुत मेवा मिष्ठान पकवान बनाए होंगे बहुत, लेकिन देंगे नहीं, लेकिन भात दे देंगे। कच्चा प्रसाद, भात दे देंगे। तुम से जाकर के भात मांगो, उदनम याचत। तो गोपों ने कहा कि अरे ऐसा नीचे मत गिराओ हम लोगों को, जाकर हम भीख मांगेंगे, ऐसा मांग। भूख लगने का मतलब क्या है कि हम बस जहां तहां हाथ जोड़े, यही सिखा रहे हो। तो भगवान ने कहा अस्मद विसर्जिता, कोई बात नहीं, तुम्हें लज्जा की क्या बात है, तुम वहां जा करके कहना कि हमको कृष्ण बलराम ने भेजा है, ये बलराम कृष्ण ने भेजा है, ऐसे बोल वहां जाकर कहना अस्मद विसर्जिता प्रेरिता, उन्होंने कहा आने के लिए यज्ञ में, या उन्होंने कहा भात मांगने के लिए, इसलिए हम आए हैं, ऐसे जाकर के कहना, अगर नहीं भी देते हैं तो उसमें तुम्हारी क्या बेइज्जती, तुम तो दूसरे के भेजने से गए हो, तुम चिंता मत करो, तुम लोग जाओ। तत्र गत्वा ओदनम याचत, हे गोपा वहां जाकर के मांगो। मांगने की शैली बता रहे हैं भगवान, कैसे मांगो, भगवत आर्जस्य मम च अभिधाम कीर्तयन्त, अभिधाम मतलब नाम, परम पूज्य श्री बलराम जी का नाम और मम च और मेरा भी नाम कीर्तन करना। भगवान का कीर्तन करते हुए मांगने में कोई लज्जा नहीं है, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम। ये भगवान है, भीख मांगने की शैली की शिक्षा दे रहे हैं, बता रहे हैं। वहां जाकर कहना कि आवाभ्याम प्रेषिता वयमिति, हम दोनों को बलराम कृष्ण ने भेजा है, और भगवान बलराम जी का और मम च मेरा भी, प्रधान रूप से बलराम जी का ही नाम लेने के लिए कह रहे हैं, और मम च छोटे भाई हैं इसलिए गौण रूप से अपने को अप्रधान रखकर मेरा भी नाम लेना। कीर्तयंत ओदनम याचत, कीर्तन करते हुए याचना करना। श्रीधर स्वामी जी लिखते हैं अस्मद विसर्जिता आवाभ्याम प्रहिता संतो या चद्वम जुष्माकम का तत्र लज्जा, हम दोनों के भेजने से मांगने गया हो तो इसमें जाने में क्या लज्जा है। ननु तथापि अपात्रत्वाद अस्मभ्यम किमिति दास्यन्ति, गोपो ने कहा कि हम तो दान के पात्र नहीं हैं। अरे भाई उसमें तो बड़े बड़े ब्राह्मणों को इनवाइट किया गया, वो खाएंगे चाहे क्षत्रिय खाएंगे, हम लोगों को गाय बकरी चराने वाले को कोई देगा। ये कह रहे तब कहते हैं चतरा कीर्तयंत, ठीक है हमारा श्री बलराम जी का और मेरा नाम कीर्तन करना, कीर्तन करते हुए घूमना और मांगना, कीर्तन करते हुए मांगना, शायद इस पर ये नियम है। वास्तव में लोक में देखा जाए कोई व्यक्ति भगवान का नाम गा रहा हो तो लोग कुछ ना कुछ दे देते हैं उसको, ट्रेन में या जहां तहां भगवान का नाम गाता है तो लोग देते हैं भगवान का कीर्तन गा रहा है सुंदर। लेकिन आजकल के तो कितने लफंगे लोग सिनेमा का गाना गाते हुए भीख मांगते हैं। तो कुछ लोग रंज हो जाते हैं, क्या बेकार गा रहा है, कहते हैं ट्रेन में भगवान का कीर्तन गाओ भगवान का नाम गाओ, तो भगवान कह रहे हैं कि तुम जाओ लज्जा मत करो, कीर्तन करते हुए मांग। ननु तरी वैष्णवा नाम अस्माकम तद ओदन याचना याचिया आलम, तो गोपो ने कहा कि नहीं नहीं हम नहीं मांगेंगे, हम वैष्णव हैं। इसी पर सनातन गोस्वामी लिखते हैं हम लोग वैष्णव हैं, वैष्णव होकर के और जाकर के मांगे भात मांगे ऐसा नहीं करेंगे। तब कृष्ण कहते अस्मद विसर्जिता आवयो प्रेरकत्वात् न तद्दोष जुष्माशु प्रसज्जेत, हम दोनों भेज रहे हैं ना इसलिए तुम दोनों में कोई दोष नहीं लगे, तुम लोगों में दोष नहीं लगेगा, जाओ मांगो। ननु अनुगेशु अपि दोषः प्रसक्तः स्यादेव। तो गोप ने कहा कि अगर जो अनुग है, जो किसी का अनुगामी है, अगर वो जा रहा है मांग रहा है तो उसमें भी दोष तो लगेगा ही। इस तरह से मांगना है, जब भूख लगी है तो मांगोगे नहीं तो क्या करोगे। तो भगवान मानो ये लीला कर रहे हैं। और लोग कह रहे नहीं हम नहीं मांगेंगे, हम ऐसे नहीं करेंगे। तब भगवान ने कहा कीर्त्यन्त इति, बलराम जी का नाम और मेरा नाम गाते हुए मांगना, दाऊ जी के भैया कृष्ण कन्हैया ऐसे करते हुए मांगना। तो इसके द्वारा मानो भगवान यह स्वीकार है कि अस्मत नाम कीर्तने न तद्दोषो नंक्षति इति भाव। हम दोनों का नाम गाने से, बोलने से भीख मांगने का दोष खत्म हो जाता है। वो भीख मांगना नहीं माना जाता है, बल्कि जो कीर्तन कर रहा है वो बहुत बड़ा दान कर रहा है। जिसके कान में पड़ रहा है कीर्तन तो उसका उपकार हो रहा है, तो ये मांगना नहीं हुआ। बहुत बड़ा दान दे करके और तब कुछ मांग रहा है, तो ये दोष नहीं है। भगवान के नाम कीर्तन की महिमा देखिए, भगवान स्वयं कह रहे हैं कुतः, कैसे हमारा नाम लेने से सब दोष मिट जाता है। तो कहते भगवत सर्वशक्तिमत, चूंकि श्री बलराम जी भगवान हैं, सर्वशक्तिमान है, और भगवत मम च, भगवत भगवान चुपके से अपने में भी लगा रहे हैं, भगवत आर्जस अभिधान और भगवत मम च अभिधान, मैं भी तो भगवान ही हूं। मन में श्री कृष्ण ये कह रहे ऐसे बोलने में बहुत शालीन है भगवान। अपने बड़े भाई श्री बलराम जी के सामने अपने को भगवान थोड़े कहेंगे, कि भगवत महान ऐश्वर्य से परिपूर्ण जिनके नाम की ऐसी महिमा है, याचना आदि का दोष मिट जाता है। एवं याचकान प्रति भगवान नाम कीर्तन पूर्वक याचन प्रकारश्च शिक्षिता। इस प्रकार याचकों को जो दान मांगते हैं उनको भगवान शिक्षा दे रहे हैं, भीख मांगने वालों को, कि भगवान का नाम कीर्तन करते हुए ही भीख मांगना चाहिए। यह एक प्रकार की शिक्षा ही है। सरार्थदर्शी याचत याचध्वं कीर्त्यन्त इति अवाभ्याम स्वनामनापि प्रबोधितुम अशक्य है। तो चक्रवर्ती पाद जी कहते हैं कि अरे मन में भगवान ये अर्थ करेंगे, मैं ऐसे लोगों के पास तुमको भेज रहा हूं कि मेरा नाम सुनाने के बाद भी उनकी अज्ञान निद्रा नहीं टूटेगी। ऐसे कहते हैं इति अवाभ्याम स्वनामना अपि प्रबोधितुम अशक्य ईदृशी तेषाम विदुषाम निद्रा इति ज्ञापितुम ज्ञापितुम उक्तम आर्जस्य श्रेष्ठस्य बलदेवस्य प्रथमम अभिधान कृत्यंत इति। तो श्री बलराम जी का नाम पहले लेने के लिए क्यों कह रहे हैं, इस पर चक्रवर्ती पाजी कहते हैं क्योंकि मत तो वैश्य जाते हैं सकाशाद आर्जम क्षत्रिय जाति किंचित अभ्यर्हि तत्व दान पात्र मत्वा यदि ते बहिर्दर्शिनो वह किंचित दास्यन्ति तदपि भद्रम इत्यादि प्राय। मैं वैश्य जाति का हूं भगवान कहते, तो चातुर्वर्ण में चतुराश्रम में पहले से श्रेष्ठ हैं ब्राह्मण, और उसके बाद हैं क्षत्रिय, उसके बाद वैश्य, उसके बाद शूद्र। तो मैं तो वैश्य जाति में हूं, लेकिन श्री बलराम जी क्षत्रिय में हैं, ये प्रकट बात है। भगवान अपने को श्री नंद बाबा का पुत्र कह रहे हैं और काम भी कर रहे हैं, घोषित ही सब जगह है कि नंद के पुत्र। और श्री बलराम जी के लिए यह है कि वो पोष्य पुत्र हैं, नंद बाबा के यहां रहते हैं, लेकिन हैं वसुदेव जी के पुत्र, ये जादव हैं। चक्रवर्ती पाद जी कहते हैं कि इसलिए उनका नाम भगवान लिए कि क्षत्रिय होने के कारण वे और हितत्व ने दान पात्र मत्वा कि ये बड़े हैं, श्रेष्ठ हैं। भाई कोई बड़ा राजा का लड़का जाकर के मांग रहा है तो कौन नहीं दे देगा, ये क्षत्रिय है। तो हो सकता है इस बहिर्दर्शी लोग यह मान करके कि बलराम जी श्रेष्ठ हैं तो हो सकता है कुछ दे दें तो इससे भी उनका कल्याण होगा, इसलिए पहले भगवान बलराम जी का नाम बोलना है। और मम च मेरा भी बोलना है, यदि श्रद्धा होगी तो देंगे, जो भी होगा। इस पर हरि सूरी जी लिखते हैं, श्री भगवान भात मांगने के लिए ही क्यों कहे, कुछ तो अभिप्राय होगा। संस्कृत में भात भक्त कहते हैं भात को, असल भक्त शब्द से ही भात शब्द बना है, भात, और उसको ओदनम भी कहते हैं। ऐसे ओदन का अर्थ भोजन भी होता है, लेकिन ओदन मुख्य रूप से अन्न का भोजन कहा जाता है, और अन्न भी मुख्य रूप से भात को ही कहा जाता है। बंगाल में जानते हैं कि अन्न लागे तो अन्न मतलब चावल है ना, और उड़ीसा में भी ना भात को ही अन्न कहते हैं, ओदनम। हरीश्वरी जी कहते हैं कि भगवान ने भात मांगने को ही क्यों कह रहे हैं, एक हृदवासन हृदवासना हृदवास नासना एक शक्तो भक्त समागम स्फुटि कुर्बन प्रभुर भक्त प्राप्येतन विनियुक्तवान। भगवान ने देखा कि हृदवास का नाश, हृदय की वासना का नाश भक्त समागम से ही हो सकता है, भक्तों के साथ कोई होगा तब उसके हृदय की वासना जाएगी, ये भूख भी हृदय में ही है। तो इस अभिप्राय से कह रहे हैं कि हृदवास, जिसका हृदय में वास है, देह के भीतर वास है, वासना, उसका नाश भक्त समागम से होता है। शायद यही सोचकर भगवान ने उसके नाश के लिए भक्त संगति के लिए भेजा भक्त उनको अपने सखाओं की, जाकर भक्त का संग करो, भक्त मांग लाओ, भक्तों को इकट्ठा करके लाओ। एक प्रश्न होता है कि भगवान जब जानते थे कि ब्राह्मण नहीं देंगे फिर भी उनके पास क्यों भेजे, तो कहते जानन अत्यंतरात्मा अंतरात्मा सर्वांतर जामी प्रभु जानन अपि, क्या जानन, द्विजवर करतो लभ्यते नान्न में भी, द्विजवर करता द्विज श्रेष्ठों के हाथ से ये भी इन गोपों द्वारा अन्नम न लभ्यते, अन्न मिलेगा नहीं, भगवान जानते थे पूरा। जब फिर भी तत्र प्राहिणोत्तान द्विज सदसी सखीन, अपने सखाओं को फिर भी उस द्विज सभा में भेज रहे हैं ब्राह्मणों के समाज में, तत्र भात्याशयो अयम, तत्र अयम आशय भारती, जब जानते हैं कि वे नहीं देंगे फिर भी भेजे तो इसमें भगवान का आशय क्या है, जब व्यक्ति पहले ही जान जाएगा कि बेकार है वहां भेजना, वो नहीं देंगे तो क्यों भेजेगा, फिर भी भगवान भेजे सर्वांतर जामी होकर के भी, तो इसमें भगवान का अभिप्राय क्या था, आशय ऐसा भात ऐसा साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। वक्तारो ब्रह्मवार्ताम सदसद मतयो ये च यज्ञ ध्वजाये तेषाम श्रद्धा न कस्मिन फलमपि न प्रीति इत्यत्र बोध। जो भगवान ये दिखाना चाहते थे कि जो ब्रह्मवार्ता के वक्ता हैं, जो वेदों पर प्रवचन करते रहते हैं, वेद के श्लोकों को रटते रहते हैं, बोलते रहते हैं, उनको वक्तारम वक्तारो ब्रह्मवार्ता, वेद का जो घोष करते हैं, सद असद मतयो, सद असद मति में ही पड़े हुए हैं, सद असद मति में संसार की बातों में, ये अच्छा है ये बुरा है ये है वो है, और ये यज्ञ ध्वजा ये और यज्ञ ध्वजा जो खास यज्ञ करने पर ही पड़े रहते हैं, धुआं उत्पन्न करना हवन करके और यह वह, उनकी किसी में श्रद्धा नहीं होती है। वास्तव में भगवान दिखाना चाहते हैं कि किसी में श्रद्धा नहीं होती है और भगवान में भी श्रद्धा नहीं होती है, और जो काम करते हैं वो बिल्कुल निष्फल होता है और मैं कभी प्रसन्न नहीं होता हूं ऐसे काम से। भगवान यही दिखाने के लिए पहले उनके पास भेज रहे हैं, ब्राह्मणों के पास भेज रहे हैं। वे बहुत उच्चे ब्राह्मण थे, हमेशा यज्ञ नहीं लगे रहते थे, स्वाहा हा हा नहीं हमेशा लगे रहते थे, और हवन करना, ये जुटाना, ये कर्मकांड, ये सब। लेकिन भगवान का नाम सुनने के बाद भी एक बार भी हृदय प्रफुल्लित नहीं हुआ कि ये बच्चे आकर भगवान का नाम बोल रहे हैं, जैसा उआ रही है कथा। तत्र गत्वा भगवान तत्र गत्वा ओदनम गोपा याचतास्मद विसर्जिता कीर्तयन्तो भगवतो आर्जस्य मम चाभिधा। ओदनम शब्द पर हरि जी कह रहे हैं कि प्रणवाद्या दम ध्याक्ता नांतर वर्णावलिर द्विजयी ज्ञाता न वा इति विज्ञातुम उचे ओदनम एव तान। हरि बोल हरि बोल। कम से कम ये भी तो सुनिए कि वो क्या कहते हैं। ओदन शब्द में तीन अक्षर है, ओ द और न, इस पर व्यास करते हैं। प्रणवाद्या, जिस ये तीनों अक्षरों में प्रणवाद्या प्रणो आदि में है, ओम ओम में पहले ओ है ना, तो ओ ले ओ, और दम धी दम का अर्थ है स्थिर बुद्धि, दम धी, तो ध्याक्ता धी बीच में है, ओ शुरू में है प्रणवाद्या, और धी बीच में है, और नांतर वर्ण और न अंत में है, न शब्द अंत में है। तो श्री भगवान मानो चेक कर रहे हैं ब्राह्मणों का उदन कह करके कि ओम जपने में इनकी निष्ठा है कि नहीं, तो ओह, और इन्होंने इंद्रियों का दमन किया है उसमें बुद्धि इनकी लगी है कि नहीं, इंद्रियों में दमन करने में द द ओ द, तो ये इंद्रियों का दमन किए हैं कि नहीं, और ओंकार खूब जपे हैं कि नहीं, और न और भगवत अतिरिक्त नेति नेति वेदों के जो निगेटिव वाक्य है उसको इन्होंने ठीक से समझा है कि नहीं, शायद यही जांचने के लिए उन्होंने ओदन कहा है। ओदन प्रणवाद्या दमध्याक्ता नांतर वर्णावलिर द्विजयी ज्ञाता न वाइति विज्ञातम उच्चे योदना में वतान। यही जांचने के लिए भगवान ने कहा कि जाकर देखो कि ये लोग सचमुच के प्रणव परायण है, अगर प्रणव परायण होंगे तो मांगने पर तुरंत कहेंगे ओम, इनके मुंह से निकलेगा, जो ओम को जपे हैं बहुत काल तक तो ओम निकले। ओम का अर्थ होता है हाँ ठीक है मैं स्वीकार करता हूं ओम, और द हाँ दस्यामी दूंगा। वो हरिश्री जी ये कह रहे हैं कि ये कहेंगे पहले ओम ठीक है और द दस्यामी दूंगा, या नहीं देना होगा तो कम से कम न तो बोलेंगे, नहीं देना होगा तो न बोलेंगे। तो भगवान इस तरह से भेज रहे हैं कि वेद के निगेटिव वाक्यों का ज्ञान इनको है कि नहीं, और ओंकार के जप में इनकी निष्ठा है कि नहीं, और दान देने में भी इनकी निष्ठा है कि नहीं। ओ द और न, मानो भगवान ने यही सोच करके ये उद्यम शब्द कहा, नहीं तो अन्न कह सकते थे, अन्नम याचत, अन्न जाकर के मांगो, उदन क्यों कहे, यह भाव है। अच्छा, श्री राम का नाम लेने के लिए कहे और अपना नाम, तो इस पर हरिश्वर जी कहते हैं कि भोगिनश्चेद राम नामनी, भक्ताश्चेद नामनी में ते मम श्रद्धा लवो भविष्यन्ति या उच्चत नामनी द्वय। भगवान ने सोचा कि अगर भोगी वो होंगे, भोगों में ही रुचि होगी, तो जो भी हो किसी कारण से, हरिश्वर जी अर्थ कर रहे हैं, तो राम नाम सुनने पर उनकी श्रद्धा उमड़ जाएगी, वो देंगे जरूर। और भक्त होंगे तो मेरा नाम सुनने पर श्रद्धा उमड़ेगी। तो जैसे भी हो, चाहे भोगी हो चाहे जोगी हो, मेरे भक्त हो, वो इन दोनों नामों को मैं बोलने को कह रहा हूं, तो किसी न किसी नाम से प्रभावित होकर के वो कुछ देंगे। शायद इसीलिए उन्होंने दोनों नाम बोलने के लिए कहा, कोई कारण है जरूर। भोगिनश्चेत राम नामनी, भक्ताश्चेत नामनी ते मम श्रद्धा लो भविष्यन्ति। भोगी होंगे तो राम नाम में श्रद्धा करेंगे, और भक्त होंगे तो मुझ में श्रद्धा करेंगे, मेरे नाम में। किसी कारण से राम नाम का अर्थ करने में जो रमते हैं, भोगों में रमते हैं, ऐसे राम ऐसे कुछ कर रहे हैं अर्थ, जो भी हो, इसलिए दोनों नाम बोले। वहां जाकर के गोप इत्यादिष्टा भगवता गत्वा याचन्त ते तथा, भगवता श्रीकृष्णेन इति इत्थम आदिष्टा ते गोपा तत्र गत्वा पृथिव्याम दंडवत पतिता। वे गोप जब गए, जो ब्राह्मणों से कोटि गुना श्रेष्ठ हैं भगवान के पास, वे गए और ब्राह्मण यज्ञ में लगे हुए थे, स्वाहा या वेद पाठ, अग्नि सुलगाना और सब करना लगे हुए थे, बड़े तेजस्वी ब्राह्मण थे। वे गए तो वहां जाकर जैसा भगवान ने कहा था, पृथिव्याम भूमि, भूमि कहते पृथ्वी पर, दंडवत पतिता, गिर गए धड़ाम से दया उत्पन्न करने के लिए, अथवा उनके तेज से प्रभावित होकर के किए तो बिल्कुल देवता जैसे हैं, गोरे गोरे मोटी मोटी ब्राह्मण सब वहां बैठे थे, उनको तेजस्वी देख करके और प्रणाम किए, मोटे से मतलब खा पी करके घी आदि सब बहुत पुष्ट थे। यज्ञ करना और इसके बाद पाना और कोई काम था नहीं। दंडवत पतिता, पतिता निराधारा, दंडा जथा पतंती तदवत पतिता। पतिता गिर ही गए, मतलब वहां ब्रजरज रहा होगा यज्ञशाला के बाहर, उसमें गिरे और कृतांजलि पूछा, और उसके बाद उठ करके कृत अंजलि पूटा, हाथ जोड़ करके विप्रान तथा अयाचंत, जैसा भगवान ने कहा था उस तरह से याचना किया। इसका मतलब कि भगवान का नाम ले रहे थे, श्री बलराम जी का नाम ले रहे थे, फिर भी उन ब्राह्मणों ने कोई ध्यान नहीं दिया। ये नहीं था कि बच्चे आए हैं मांगने के लिए तो उनको कम से कम हम ध्यान दे कि कहां से आए हैं और आशीर्वाद दे, या भगवान का नाम सुनकर कभी थोड़ा ध्यान दे कि कौन लोग हैं। कोई भगवान का नाम सुनकर प्रसन्न होगा ना, अच्छा आदमी रहेगा तो, लेकिन ये गधे उठे नहीं, उठने की बात तो दूर रही, देखे तक नहीं कि कौन प्रणाम कर रहा है, इतना जान गए कि कोई प्रणाम कर रहा है। दंडवत पतिता, ध्यान रखिए जैसे डंडा को छोड़ दिया जाए खड़ा करके, निराधार डंडा, उसको कोई पकड़े नहीं, तो जैसे गिरता है वैसे वैसे गिरे, इसका मतलब हाथ बिल्कुल आगे पैर पीछे ऐसे प्रणाम किए, दंडवत पतिता। और मांगे इति भगवता आदिष्टा इति तदाज्ञा पालनस्य आवश्यकत्वादित्य। तो वे गोप क्यों ऐसे प्रणाम किए, क्योंकि भगवान की आज्ञा का पालन करना आवश्यक था, कृष्ण ने कहा था कि ऐसे करना। यदि ये नहीं पता चल रहा है कि भगवान ने कहा था कि प्रणाम करना, लेकिन ये प्रणाम किए, इसका अर्थ तथेति यथा तेना आदिष्टा आदिष्टम तेनैव प्रकारेण। लेकिन जब भगवान आदेश कर रहे थे तो गोपों का इन ब्राह्मणों में कोई आदर नहीं था, कोई ऐसे भगवान भेज रहे थे फिर भी वो लोग कुछ अनादर दिखा रहे थे। इसी कारण से भगवान ने गोपों को ब्राह्मणों को प्रणाम आदि करने के लिए नहीं कहा था, जनता करेंगे नहीं। यहां एक अर्थ कर रहे हैं सनातन गोस्वामी पद कि भगवान ने क्यों नहीं कहा कि प्रणाम करो, प्रणाम करके तब मांगना है। तो ये अर्थ करते हैं कि गोप सखाओं के लक्षण को देख ले भगवान की ये कोई बहुत आदर का भाव नहीं रखे हैं, तो उन्होंने प्रणाम करने के लिए नहीं कहा था। अथवा भगवता आदिष्टा तथा, भगवान ने कहा होगा कि पहले जाकर के प्रणाम करना चाहिए, तो जैसे भगवान ने कहा था तो उसके अनुसार प्रणाम किए। जो भी अर्थ लिया जाए सब समीचीन है, तो भगवान ने जैसा कहा था वैसे जाकर प्रणाम किए। लेकिन सनातन गोस्वामी पाद जी कहते हैं तेना ना आदिष्टम इति बोधयति, तेना ना दिष्टम इति बोधयति। भगवान ने प्रणाम के लिए नहीं कहा था, लेकिन श्री वैष्णव प्रवराणाम तेषाम स्वभाव तो विप्रेषु भक्ति, वैष्णव श्रेष्ठ हैं गोपगण, तो ब्राह्मणों में सहज ही प्रेम था उनका, स्वाभाविक श्रद्धा थी, इसलिए वो लोग प्रणाम किए। तेना नाम कीर्तनादि प्रकारेण अयाचंत तथा तेना प्रकारेण, अर्थात नाम कीर्तन आदि जैसे जैसे कहा गया था वैसे जा करके और मांगे। उन लोगों ने पूछा अभी तक क्या कहना चाहिए, ठीक से बताओ कैसे पहले बोलना चाहिए कैसे बाद में बोलना चाहिए, क्योंकि मुख्य उद्देश्य था भोजन मिले किसी तरह। ब्राह्मणों की भक्ति जाकर के करनी है, इसके लिए वो लोग नहीं गए थे, उनका उद्देश्य था भोजन प्राप्त करना, तो विधि की शिक्षा प्राप्त किए। कृतांजलि पुटाई थी श्रेषम सौशील्यम अभिव्यंजयितुं तच्च तदानीं भिक्षा प्राप्त्यर्थकमेव। जो अंजलि बांध करके प्रणाम कर रहे हैं तो उसमें मुख्य उद्देश्य है वो अन्न प्राप्त करना, अपनी अपना सौशील्य दिखा रहे हैं, सुशीलता। और दंडवत पतिता इति स्वीय ब्रजस्थ विप्रेभ्योपि सकाशत तान अति तेजस्विनो मत्वा। वे लोग अपने ब्रजवासी जो ब्राह्मण हैं वे तो गाय साय चराते रहते थे भगवान के साथ इधर उधर, तो उनसे ज्यादा देखने में तेजस्वी लग रहे थे, तो उनको श्रेष्ठ समझ करके दंडवत पतिता दंडवत प्रणाम किए गो और बोले। जब प्रणाम करने पर लोग देखे भी नहीं, देख करके भी ना देखी किए, पश्चिम न पीना पश्चिती देखे, लेकिन कोई बातचीत नहीं, कोई स्पेशल अटेंशन नहीं, ऐसे थोड़ा देख करके दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, करें फिर भी अपने हवन और लगे रहे, तब उनके ध्यान को अपने तरफ आकृष्ट करने के लिए ये गोप हाथ जोड़ करके कहते हैं हे भूमि देवा, वो तो वेद का वाक्य पढ़ने में लगे हुए हैं हवन आदि में, तो उनके चित्त को आकृष्ट करने के लिए कि हमारे तरफ जरा देखें ध्यान दें, इसके लिए पहले संबोधन किए, हे हे भूमि देवा, हे पृथ्वी के मूर्तिमान देवगण। आकाश में दूसरे देवता रहते हैं, असली देवता जो है, लेकिन पृथ्वी के देवता ब्राह्मण हैं। भूमि देवा, कितना सुंदर शब्द बोल रहे हैं गोप। हे भूमि देवा, हे भूमि के देवता, फिर भी नहीं सुन रहे, फिर भी नहीं ध्यान दिए। वो आवाज सुने लेकिन इधर सिर नहीं किए। तब लोग कहते श्रीणु तो सुनिए, जरा ध्यान दीजिए, हे देवताओं हे पृथ्वी के देवताओं जरा सुनिए। शायद बच्चों ने सोचा कि प्रणव आदि का उच्चारण कर रहे हैं, वेद मंत्र बोल रहे हैं, तो इस कारण नहीं सुन रहे हैं। लेकिन वो तो सुन करके भी नहीं सुन रहे थे, जानबूझ करके। जैसे कोई जगे हुए आदमी को जगाने लगे तो थोड़े जगता है, सोया हुआ आदमी जग जाता है। लेकिन जगा है और फिर भी जगे जगाने और चाहता नहीं हो उठना, तो और अंगड़ाई लेगा चाहे कुछ करेगा, नहीं उठेगा। ऐसे ये वास्तव में बात सुनना नहीं चाहते, ये तो जान गए कि ये कुछ लड़के आए हैं और ऐसे बोल रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। अभी तो मांगे नहीं, अभी तो प्रणाम कर रहे हैं, तो कम से कम प्रणाम तो ध्यान देना चाहिए था ना। प्रणाम पर ध्यान देना चाहिए, कौन प्रणाम कर रहा है, क्या बात है। अंत में गोपों को यह कहना पड़ा, हे भूमि देवा श्रृणुत, कृपा करके सुनिए, कृष्णस्या देश कारिण। तो उन लोगों ने थोड़ा दृष्टि किया कि ये कौन है सुनने के लिए बाध्य कर रहे हैं। हम कृष्ण के दास हैं, कृष्ण की आज्ञा का पालन करने वाले हैं। इतने पर तो इनको बहुत ध्यान देना चाहिए था, लेकिन कृष्णस्य देश कारिण, हम कृष्ण के दास हैं, कृष्ण के आदेश को करने वाले हैं, आदेश पालक हैं, अर्थात कृष्ण की आज्ञा से आए हैं, अथवा कृष्ण के आदेश पालक हम हैं, कृष्ण के दास हैं और बलराम जी के भेजने से आए हैं। और हमें आप जानना चाहते हैं हम कौन हैं, तो हम गोप हैं, हम गाय चराते हैं, इसी ब्रज में हमारा जन्म हुआ है, गौओं की रक्षा करते हैं। कितना बड़ा पवित्र काम बता रहे हैं, हम गायों का पालन करते हैं, गोपान और रामचोदितान, हमको राम ने भेजा है, श्री बलराम ने भेजा, श्री बलराम जी ने नहीं भेजा था कृष्ण ने भेजा था। लेकिन अब किस कारण से बलराम जी का नाम ले रहे हैं, हरिश्वर जी उपेक्षा देते हैं, और सब कारण है। तो पहले तो उनकी प्रशंसा किए कि हे पृथ्वी के मूर्तिमान देवताओं, वो देवता का तो कोई दर्शन करे या ना करे, आते हैं या नहीं आते हैं, लेकिन ब्राह्मण तो साक्षात देवता है इस पृथ्वी के, वास्तव कितना आदर है। हे देवताओं सुनो, कृष्णस्य आदेश कारिण, हम लोग कृष्ण के आदेश पालक हैं और गोप हैं और बलराम के कहने से भेजने से प्राप्त, यहां हम आए हैं ऐसा जानीता, ये जानिए। भद्रम वह, आपका कल्याण, आशीर्वाद भी दे रहे हरिश्वर जी कहते हैं कि वो और प्रणाम करने पर कहते हैं कि दाता चाहे सठ हो चाहे कुछ हो, दाता हमेशा प्रणाम के योग्य है ही। प्रणाम किए तो ठीक किए, और आशीर्वाद क्यों दे रहे हैं कि ये याचक की एक रीति है, आपका परिवार जीता जागता रहे, फलिए फलिए, ऐसे ऐसे राधा रानी भला करेगी, ये करेगी वो करेगी, ये तो स्वभाव है अथवा सनातन गोस्वामी पाद जी कहते हैं कि जब भगवान का नाम लेने से और कृष्ण का आदेश पालन करने वाले हम लोग गोप हैं, इस पर भी जब वो ध्यान नहीं दिए तो गोप समझ गए कि अरे ये तो बहुत कुकर्म कर रहे हैं, इनका अनिष्ट होगा, इसीलिए मनाने लगे भद्रम तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा कल्याण हो, ऐसी दुर्दशा में पड़े हुए हो कल्याण हो। अथवा स्वाभाविक ही याचक की जो रीति है उसके अनुसार धन्यवाद देते हैं, अस भद्रम ते आपका मंगल हो, ये हो वो हो, मांगने से पहले ही धन्यवाद दे रहे। तो हम लोगों को जानो हम लोग कौन है। एक कहते हैं कृष्णस्य आदेश कारिण रामचोदितान इह प्राप्तान न अस्मान गोपान जानित। ये अपने बारे में बताना चाहिए कि सरकार हम ये हैं, यहां से आए हैं, इसने भेजा है, तो इस तरह से बोलना है। वह भद्रम अस्तु तदेवा हे भूमिति हे भूमि देवा इति भक्त्या विप्राणाम संबोधनम। भक्ति से संबोधन कर रहे हैं, इस पृथ्वी के देवता ब्राह्मण हैं तो उन्हें संबोधन कर रहे हैं। यद्यपि आर्जस्य इति श्रीकृष्णेन आदौ निर्दिष्टम आर्जस्य इति श्रीकृष्णेन आदौ निर्दिष्टम तथापि तेषां स्वभावतः कृष्णे भक्ति विशेषेण कृष्णस्य आदेश कारण सेवकामिति प्रागुक्ति। यदि स्वयं श्रीकृष्ण ने कहा था कि आर्ज का नाम लेना, श्री बलराम जी का नाम लेना, लेकिन फिर भी कृष्ण में भक्ति विशेष होने से एक गोप पहले ही कह दिए कृष्ण के आदेश का पालक करने वाले हैं, हम कृष्ण के दास, भक्ति विशेष के कारण पहले कह दिए। और जहां प्रेम है भक्ति है स्वाभाविक निकल गई बात। प्राप्तान आगतान, प्राप्तान का अर्थ आगतान, हम लोग आए हैं इस तरह से। तत्क्षणे आदरम अनालक्ष्य ये सुनने नहीं तो तत्व श्रवण इसके सुनने पर भी आदरम अनालक्ष्य आदर न देकर तेसा महापराधम मत्वा कृपया क्षेमम आशा सते ओ भद्रम थे, कृपया से उनके कल्याण की कामना कर रहे हैं। अथवा भक्तियुक्ति स्वभाव एवं याचक रीति अनुसार अद्वा, अथवा याचक की रीति के अनुसार आशीर्वाद देना। अच्छा जब ये कहे कि हम कृष्ण के सेवक हैं तो ये पूछ, मान लीजिए अगर पूछे मन में तो पूछते ही होंगे ननु कृष्ण सेवका युजम कथम अत्रागता, कृष्ण के सेवक होते यहां क्यों आए हो। और मान लीजिए ब्राह्मण पूछे तो कुछ बोले नहीं, लेकिन इनके मन में तो उठा ही होगा कृष्ण के सेवक होते यहां क्यों आए हो, तत्राहु रामेति राम ने भेजा है, यहां राम ने प्रेरित किया कि जाओ वहां जग मंडप में, तो राम के भेजने से आए। अच्छा कृष्ण की आज्ञा से राम ने भेजा है, ये भी अर्थ है। इसलिए कह रहे हैं कि दोनों की आज्ञा कहेंगे, दोनों का भेजना कहेंगे तो जरूर देंगे, इस भाव से। एवं द्वाभ्याम एवं प्रेषणम ज्ञापितम तथापि कृष्णादिष्ट क्रमाति क्रमस्तेषां कृष्ण भक्ति स्वभाव देव कृष्ण राम नामनो अन्वर्थतया। और कृष्ण और राम शब्द का अर्थ किया ही गया है तो उनकी महिमा सुन करके अवश्य देंगे। तो पहले तो कहे हम कृष्ण के सेवक हैं, एक प्रकार से वे भी कहे कि हम दोनों के सेवक हैं, एक के भेजने से आए हैं और एक के आदेश का पालन करते हैं। तो आदेश का पालन करते हैं कृष्ण का, तो कृष्ण ने जरूर कहा होगा बलराम जी से या जैसे कि इनको भेजा जाए, तब बलराम ने भेजा, जो भी हो इस तरह से बोले। कृष्णस्य आदेश कारण इति तस् नंदराज पुत्रत्वेन रामतः सकाशाद ऐश्वर्यात रामचोदिता नित्य अस्मत द्वारा राम एवं अन्नम प्रथमम भिक्षते इति प्रारंभ। तो चक्रवर्ती पाद जी फिर अर्थ कर रहे हैं कृष्ण के आदेश पालक हैं और राम ने हमको भेजा है, तो ये कहकर मानो ये कहना चाहते हैं कि हम कृष्ण के आदेशकारी हैं, नंद महाराज के पुत्र हैं कृष्ण, राम से इनका ऐश्वर्य अधिक है, एक प्रकार के भाव व्यक्त कर रहे हैं। तो हम लोग बड़े व्यक्ति हैं, कृष्ण के आदेश पालक हैं, लेकिन राम ने भेजा है तो आप ऐसा ही समझिए कि राम ही हम लोगों के द्वारा अन्न मांग रहे हैं। आगे आगे जब अन्न की बात करेंगे तो ये अर्थ हुआ, बलराम ने भेजा है। हे भूमि देवा, हरीश्वर जी कहते हैं, पहले तो ये कहे कि दाता सठो भवति वा भूमिबंदेव विप्र सदेति कृत तन नमना विविक्तम अर्थी स्वरूप अथवा निखिलानुभूतम दीनाक्षरम कृतमति प्रकृतांजलि। दाता हमेशा प्रणाम के योग्य है, दाता चाहे सठ भी हो दाता सठ हो लेकिन पृथ्वी पर सदा बंद है, और उसमें भी ब्राह्मण तो सदा बंद है, प्रणाम करना चाहिए। और जो मांगने वाला है उसके लिए यही उचित है कि दीनाक्षरम कृतनति, वो दीन वचन बोले, प्रणाम करे और प्रकृतांजलि थी और प्रकृत अंजलि, और हमेशा हाथ जोड़ करके मांगे चाहे बोले। तो ठीक ही किया गोपो ने, प्रणाम किया वो उचित था और हाथ जोड़ करके मांगा उचित। भूमि देवा क्यों कह रहे हैं? अभ्यर्थना अच्छा एक प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, इन गोपों ने ये क्यों कहा कि बलराम ने हमको भेजा है? बलराम जी तो भेजे नहीं थे, जैसे कि सुखदेव गोस्वामी ने कोई उल्लेख नहीं किया कि बलराम जी भेजे या नहीं भेजे, फिर भी ये जाकर कहे कि बलराम ने हमको भेजा है। तो इस पर हरीश्वर जी लिखते हैं, अभ्यर्थना प्रभु कृता चरैर्न वाच्या दातु पूर्व यदि चते न तत्प्रदत्तम स्यात् स्वामी न तिलहुते विचिन्त नीतिम जुक्तम तदोच रीतिराम गिरागतास्म। यदि प्रभु के द्वारा अपने स्वामी के द्वारा कोई याचना की गई हो, किसी से कुछ मांगा हो, तो कभी भी जाकर के ये नहीं कहना चाहिए कि हमारे स्वामी ने मांगा है, मेरे प्रभु ने मांगा है। क्यों? दातु पुरो, दाता के सामने कभी नहीं कहना चाहिए कि हमारे स्वामी ने मांगा है, क्योंकि यदि तेन च न तत्प्रदत्तम, यदि वो वस्तु उसको नहीं दी गई तो उसे स्यात् स्वामिनो की लघुता, अपने स्वामी की लघुता होती, भाई मैंने मांगा दिया नहीं, लघुता होती है। यही नीति देख करके गोपों ने वहां जाकर कह दिया कि हमको राम ने भेजा है, कृष्ण ने हम नहीं भेजा है, हम लोग कृष्ण के आदेश का पालन करने वाले हैं लेकिन भेजा है राम ने। तो अगर ये लोग नहीं देंगे तो कम से कम कृष्ण की तो बेइज्जती नहीं होगी ना, राम की होकर के रह जाएगी, तो राम उनसे छोटे है, मतलब ऐश्वर्य में भगवत्ता में स्वामित्व में वे छोटे हैं। तो यही सोच करके बच्चों ने जाकर के झूठ बोला है। झूठ क्या बोला है? नीति है कि अपने स्वामी की इज्जत बचा करके रखनी चाहिए। भेजा था वास्तव में श्री कृष्ण ने, है ना, आपने सुना ना, वे भेजे थे, बलराम जी तो बोले भी नहीं, बलराम जी नहीं बोले, और वहां जाकर के गोप कह रहे हैं कि बलराम ने भेजा तो अपने स्वामी की इज्जत को कायम रख रहे हैं। तो वही हरिश्वर जी कह रहे हैं कि अभ्यर्थना याचना प्रभु कृता, अगर अपने स्वामी ने प्रभु ने याचना किया है तो चर ही न वाच्य, चर का कर्तव्य, चर माने दूत सेवक अनुचर, अनुचरों का कर्तव्य है कि वे स्वामी की याचना को दाता के सामने न कहें, कदाचित वो नहीं देगा तो इससे प्रभु की लघुता सिद्ध होती है, छोटापन सिद्ध होता है। यही नीति स्मरण में रह करके गोपों ने कहा कि राम ने भेजा है, अन्यथा ऐसा कहने की क्या जरूरत है, क्यों नहीं जाकर कहे कि कृष्ण ने भेजा है हमको, कहना चाहिए ना, लेकिन नहीं कहते, यही कारण है। अच्छा, उनको भूमि देवा कह रहे हैं, पृथ्वी के देवता ये क्यों कहे, क्या सोचा गोपो ने, तब हरिश्वर जी लिखते हैं राम शेषावतार। उन गोपों का अभिप्राय था कि राम शेषावतार हैं, भगवान शेष नाग के अवतार, राम शेषावतार। ये शेष जिनके अवतार हैं ये गौड़ी वैष्णव लोग अर्थ कर लेंगे ढंग से। राम शेषावतार सच धरणी धर इति आख्यात्र प्रसिद्ध। और शेष नाग की आख्या प्रख्याति है कि वे धरणीधर है, धरती को भूमंडल को अपने सिर पर उठाए हुए है, प्रख्यात बात। जस्याम देव इति नामना, और उसी धरती पर हम लोग देव इति नामना व्यवहृति विषया सम बसामो वयम ही, हम लोग इसी धरती पर रहते हैं जिस धरती पर हम लोगों को देवता माना जाता है। ये बच्चे सोच रहे हैं कि ब्राह्मण जरूर विचार करेंगे, अगर बलराम जी का नाम सुनेंगे तो देंगे जरूर, क्योंकि बलराम जी शेषनाग हैं और शेषनाग के ही फण पर ये भूमंडल पूरा है, उस भूमंडल के ऊपर ये देवता कहे जा रहे हैं। ये लोग सोचेंगे हम लोग इसी पर बसते हैं, तो सब धर्मिक प्रतिष्ठापन धृति विरुद्ध, और सब धर्म की स्थापना में हम लोगों का विरुद्ध जाना जाता है, जो सस्वी है कि ये लोग धर्म का प्रचार करते हैं, ये करते हैं, और स्वत्र सर्वेष्ठ कारी, और वही भगवान शेषनाग या श्री बलराम जी सबके इष्ट को पूरा करते हैं, यह सोच करके जरूर इति आलोच्य अपि प्रदद्य, ये क्वचित हो सकता है कि ये सोच करके ये दे दें। अतः पशुपा अब्रुवन राम वाक्यम, इसीलिए पशुप वहां पहुंच करके राम ने भेजा है ये बात बताया, अन्यथा ब्राह्मणों से राम ने भेजा है कहने की क्या जरूरत है, क्योंकि इसी पृथ्वी पर ब्राह्मण देवता कहे जाते हैं और इस पृथ्वी को धारण किया है शेषनाग ने, तो शायद इस कृतज्ञता का भाव करके हो सकता है दे दे, भोजन दे दे, डरेंगे भगवान शेषनाग से, इसलिए वो लोग ये बात कहे। यह वेद का वाक्य है कि सत्यानृताभ्याम जीवेत, व्यक्ति को चाहिए कि झूठ और सच दोनों का बैलेंस बनाकर, दोनों को मिला करके जिए, जरूरत पड़े तो झूठ भी बोले और जरूरत पड़े तो सत्य भी बोले, ये शास्त्र कहा है। शुक्राचार्य जी इस नीति को कहे हैं बलि महाराज, सत्यानृताभ्याम सत्य से और झूठ से जैसे हो जीना चाहिए, सत्यानृताभ्याम जीवे तो इति अर्थ जाथार्थ दृष्ट यह अप्य राम प्रेरितास्ते प्रोचुर जद राम चोदना, अपि अराम प्रेरिता, राम के द्वारा ये भेजे नहीं गए थे फिर भी कहते हैं कि राम ने भेजा है, तो झूठ बोल करके भी भात मिल जाए तो ठीक है। ये भाव संसार में सदा सच बोल करके जीना कठिन है, अतः अवसर कभी कभी मौका पर झूठ भी बोलना चाहिए और सच तो बोलना ही चाहिए, तो सच और झूठ को मिला करके, जैसे दाल है दाल में थोड़ा नमक भी डाल करके काम चलाना चाहिए, ज्यादा नहीं नमक डालना चाहिए दाल को भी फेंकना पड़े, लेकिन ये लड़के जा करके वहां कहते हैं कि श्री राम ने भेजा है तो झूठ, सीधा झूठ बोल रहे हैं, अपि अराम प्रेरिता। फिर भी वेद यही कहता है कि व्यक्ति को स्थिति विशेष में, काल विशेष में, देश विशेष में झूठ और सच दोनों बोलकर काम निकालना चाहिए। वो लोग अपनी बुद्धि से सोचे होंगे कि हम लोग कहेंगे कि बलराम ने भेजा है तो शायद ब्राह्मण दे देंगे भोजन, वो तो देने वाले किसी भी हालत में नहीं थे लेकिन ये लोग अपनी अकिल लगाए। धर्म भी तमाह क्यों कह रहे हैं, आप लोग धर्म को जानने वाले हैं, अच्छा ठीक है, अब उसका अर्थ कर रहे हैं सनातन गोस्वामी के अनुसार। जब गोपो ने कहा कि कृष्ण के हम सेवक हैं और बलराम ने हमको भेजा है, तो ब्राह्मण तो बोल नहीं रहे थे, लेकिन फिर भी उनके मानसिक विकल्प को प्रस्तुत किया जा रहा है कि सबसे पहले पूछे किमर्थम प्राप्ता है। गोप ने कहा कि हम राम के भेजने से यहां आए हुए हैं, प्राप्तान आगतान विद्धि, आप जानित, आप इस जानिए, हमारा परिचय, हमारा ये आईडी है, ये है, वो है, कि हम लोग कृष्ण के आदमी हैं, सेवक हैं, साथी हैं, और बलराम ने भेजा है। ठीक है, बलराम ने भेजा है चाहे कृष्ण ने भेजा है, किमर्थम प्राप्ता है, किस लिए यहां आए हो। मान लीजिए ब्राह्मण पूछे, तभी कहते हैं गायति गाश्चारयन्तो अविदूरवोदनम रामाचितो वो लसतो बुभुक्षितौ तयोर्द्विजावोदनमर्थिनोर्यदि श्रद्धा चोजच्छत धर्मवित्तमः। हे धर्मवित्तमः, धर्म तत्व को जानने वालों में सबसे श्रेष्ठ, ये कैसे जान गए कि ये धर्म को जानने वालों में सबसे श्रेष्ठ हैं? इसलिए एक तो ब्राह्मण होने से ही दूसरे तेजस्वी देख रहे थे, और किसी की प्रशंसा यदि नहीं की जाए कि आप बड़े भारी धर्मात्मा हैं, ये हैं, तो वो थोड़े देगा, कुछ प्रशंसा करना चाहिए। धर्मवित्तमा, यह स्तुति के लिए कह रहे हैं। अगर धर्म के तत्व को जानने वाला कोई श्रेष्ठ है तो याचक को वो भात नहीं देगा, बताइए, वो तो जरूर दे देगा, दान धर्म का ज्ञाता है। तो हे धर्म वित्तमा द्विजा अविदूरे गाश्चार्यंतौ बुभुक्षितौ क्षुधितौ संतौ वह ओदनम अन्नम लसतः अभिलसतः इच्छतः वह जुष्माकम यदि श्रद्धा च अर्थिनो तयो ओदनम जच्छत। हे धर्म तत्व के ज्ञाता लोगों में सबसे श्रेष्ठ, हे द्विजा वैदिक संस्कार से युक्त शुद्ध जीवन वाले, अभिदूरे यहां से ज्यादा दूर नहीं, इस शब्द का अर्थ ज्यादा दूर नहीं मतलब निकट ही, गाश्चारयंत, ये दोनों भाई, दोनों ईश्वर कही एक प्रकार से, गाश्चारयंत गाय चराते हुए, बुभुक्षित क्षुधित संत, गाय चरा रहे हैं, गाय घेरने में इधर उधर दौड़ने में घेरने में, वो दोनों बुभुक्षित, भूख लग गई, तो गाय चराने में यहां आए हैं और भूखे हैं। और इसके बाद बच्चे यहां तक कह रहे हैं कि वह ओदनम लसत, अभी लसत, जिसे अभी उपसर्ग लगा है इसमें, और आपके अन्न की अभिलाषा कर रहे हैं। गाय चराते हुए यहां निकट आ गए हैं, भूखे हैं दोनों, और आप लोगों के भोजन की अभिलाषा कर रहे हैं। तो वह जुष्माकम यदि श्रद्धा, यदि आप लोगों की श्रद्धा हो, तो भूखिता उस शब्द से कह ही दिए, वे भूखे हैं, और आप लोगों की यदि श्रद्धा है तो अर्थिनो तयो ओदनम जच्छत। याचक एक प्रकार से वही हैं, हम तो उनके कहने से आए हैं, अगर आपकी श्रद्धा हो तो उन दोनों को भोजन दे दीजिए, उन दोनों को भोजन भात दे दीजिए। ये गोप समझ गए कि ये सठ देने वाले नहीं है, तो कम से कम दोनों को तो दे देते, उनको ले जाकर के हम खिला देते, ये सबको देने वाले तो हैं नहीं, लक्षण से समझ गए। आदमी तुरंत पहचान जाता है कि ये क्या करेगा, तो उन दोनों को प्रसाद, उन दोनों को भात दो, यदि श्रद्धा है तब तो। ये तो देख लिए कि श्रद्धा वर्धा है नहीं लेकिन यदि श्रद्धा हो तो अथवा तयो यदि वह जुस्माकम श्रद्धा, यदि कृष्ण और बलराम में आप लोगों की श्रद्धा हो तो भोजन दीजिए। और अगर मान लीजिए ब्राह्मण कहे कि हमारी श्रद्धा नहीं है तो ठीक है, यदि आपकी श्रद्धा नहीं है तो नहीं दूंगे, नहीं देंगे ये कह दीजिए, हम लोग चले जाए। जिस श्रद्धा हो तो दीजिए और नहीं श्रद्धा हो तो कह दीजिए, हम लोग प्रत्यागमन करेंगे, जहां से आए वहां चले जाएंगे। ये किसी कारण से आप नहीं देना चाहें तो ननु कथम अविदुरे तौ तदाहु, क्यों इतना निकट आ गए हैं दोनों, तो कहते हैं गाह चारयंत, गाय चराते हुए, गौएं चरते हुए इधर आ गई तो उनके पीछे पीछे वे भी आ गए। गाय चराते हुए आए हैं, इति मान रक्षाए तत्र अन्नार्थम आगमनम परिहृतम। गोपों के कहने का अर्थ है कि वे अन्न के लिए नहीं आए हैं, गाय चराते हुए आए हैं, अपने स्वामी के मान की रक्षा के लिए ये गोप इस तरह से बोल रहे हैं। ये तो श्री कृष्ण अन्न की याचना कर चुके हैं तो कहते हैं कि गाय चराते हुए आए हैं, अन्नार्थम आगमनम परिहृतम, अन्न के लिए नहीं आए। यदि कोई कहे कि अन्न के लिए आए हैं तो नहीं, गाय चराते हुए आए। अन्नम इति अत्र ओदनम इति पाठ क्वचित तथापि जदन्नम इति तेषां व्याख्यापि संगच्छेत एव, अन्न कहे चाहे ओदनम कहे। ओदनम शब्देन प्राय भक्तम एव उच्यते असैव सुख भोज्यत्वा। किसी फेस्टिवल में, यज्ञ में भात के विषय में श्रीपाद सनातन गोस्वामी कह रहे हैं सुख भोज्यत्वा, ये सुख से खाया जाता है, बनाने में भी सहूलियत है और खाने में भी। ये पूरी सूढ़ी बनाना, बेलना, पकाना, इसमें कोई सुख भोज्य नहीं है। और सुख भोज्य इसलिए भी नहीं है कि अगर मान लीजिए बूढ़े आदमी हो, दांत न हो और रोटी देर का हो तो अब तो दुख है, दुख भोज्य हो तो सुख भोज्य है बात सुख भोज्यत्वात् जदवा कुतो, क्यों भूखे हैं कृष्ण बलराम, क्यों भूखे हैं? कुतो बुभुक्षित तत्रहु गाश्चार्यंत गोचारणेन तत्र चौ दूरागमनेन श्रमात् इत्यर्थ। गाय चरा रहे, तो गाय चराने में कितना मेहनत पड़ता है देखा हुआ है ना, तो बच्चे कह रहे हैं गाय चरा रहे हैं, गाय चराते हुए आए और दूर तक आए। एक तो गाय घेरना इधर से उधर, इधर से उधर और दूर तक आना, तो थक गए हैं, तो श्रम से भूख लग गई। इतनी खुल करके बात गोप लोग कह रहे हैं, फिर भी वे ब्राह्मण कुछ नहीं। यद्यपि तय वह बुभुक्षिता, श्रीपाद सनातन स्वामी कहते हैं कि वास्तविकता यह है कि वो गोप ही भूखे थे, कृष्ण बलराम नहीं। तय वह बुभुक्षिता न च तौ क्षुधार्तौ इति उक्ते तथापि बुभुक्षितौ इति तयोर बुभुक्षयै वह अन्न प्राप्ति सिद्धे। ये इसलिए कह रहे हैं कृष्ण बलराम को कि वे दोनों भूखे हैं, कि उनकी बात सुनकर के ही अन्न मिल सकता है, नहीं तो नहीं। ये इसलिए उनका नाम ले रहे हैं। क्यों वा स्नेह विशेषण निज क्षुधया तयोरपि क्षुध अनुमानेन। यह स्नेह विशेष होने से, स्नेह होने से कृष्ण बलराम को अपने भूख से उनके भूख का अनुमान करके बोल रहे हैं। जदवा तौ कुतो नायातौ, या ब्राह्मण ये पूछे कि वे दोनों भूखे हैं तो वे क्यों नहीं आए, तुम लोग कैसे आ गए पूछा जा सकता है, देखो वे दोनों क्यों नहीं आए। तब गोप लोग कह रहे गाय गाश्चर्यंतर तव बिना गवाम रक्षाम न भवेदिति भाव। वो दोनों एक्सपर्ट हैं गाय घेरने में, चराने में, खिलाने में, इसलिए वो लोग नहीं आए, वो लोग गाय चरा रहे हैं। ब्राह्मण मानवीय पूछ रहे हैं कि जब उनको भूख लगी तो यहां क्यों नहीं आए। तो और पूछे ननु संप्रति कुत्र तव तिष्ठतः, इस समय कहां हैं वे लोग, कृष्ण बलराम इस समय कहां हैं। तब बोलते हैं अभिदूरे प्राय निकटे वैत्यर्थ, अरे वो एकदम निकट हैं। इनके कहने का आशय था कि अगर निकट सुनेंगे तो हो सकता है कि ब्राह्मण भोजन की थाली ले लेकर के पहुंचे वहां। ये देने वाले थे ही नहीं, पहुंचने वाले। राम अच्युत इति द्वंद्व समासत ब्राह्मणेभ्यो भय न ज्येष्ठ क्रमेण निर्दिष्ट। ब्राह्मणों के भाई से कि देखेंगे कि ये श्रद्धा नहीं है इन लोगों की, अरे बड़े भाई का नाम पहले लेना चाहिए, इसलिए राम शब्द बोल रहे हैं कि राम। और अच्युत सर्वगुणाच्युति रहितो अच्युत इति महात्म्य महात्म्यम अनलब्धे ध्वनितम। ये अच्युत शब्द कृष्ण के लिए दे रहे हैं कि उनकी महिमा सुन करके हो सकता है ब्राह्मण दे दे। तो भोजन प्राप्ति की आशा से कृष्ण की बड़ाई कर रहे हैं। वह जुष्माकम वह अन्नम लसत अभिलसत, वह कहते जुष्माकम एवं अन्नम इति तदितरान्नम निरस्त। ये भी कह रहे कि आप लोगों के ही अन्न को खाना चाहते हैं दोनों, क्योंकि आप श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं, नहा धोवा करके रहते हैं, संस्कार करके रहते हैं, जहां तहां का भोजन कृष्ण बलराम नहीं करते। ये सुन करके भी ये दोनों देश ये ब्राह्मण लोग दे सकते थे कि आपका अन्न अभिलाषता, आपके अन्न की अभिलाषा कर रहे हैं, और इतरान्नम निराशतम अन्न दूसरा अन्न नहीं। ये भी मत सोचिए कि वे खाने के लिए यहां आए हैं और मांग रहे हैं, भूखे हैं ठीक है, लेकिन दूसरा अन्न नहीं खाएंगे। जहां तहां का अन्न नहीं खाना चाहिए, वास्तव में पवित्र लोगों का अन्न खाना चाहिए। तो जुष्माकम वह अन्नम लसत, वे आपके ही अन्न को खाना चाहते। इतने सुनने पर वास्तव में कोई व्यक्ति जरूर दे देगा कि अरे हमारी यहां ही खाना चाहते हैं, ठीक है ले जाओ ले जाओ। लेकिन ये लोग तो नहीं दिए। ननु तथापि सत्रम परित्यज गंतुम न सक्यते, सबके बाद मान लीजिए ब्राह्मण बोलने की, लेकिन हम यज्ञ छोड़ करके नहीं जा सकते कृष्ण बलराम को खिलाने के लिए, बच्चों को खाने के लिए देना ये तो दूर की बात रही। अब कृष्ण बलराम आए हैं उनको भोजन, लेकिन हम यज्ञ छोड़े, ये पूजा पाठ छोड़े अन्न पहुंचाने के लिए, हमको टाइम नहीं है, इतना पवित्र काम। और ये रास्ता चलते हुए तो ये कोल भील गोप सब घूमते ही रहते हैं, इनको क्या खिलाना है। उन्होंने ये सोचा कि हमको फुर्सत नहीं है। तब गोप कहते हैं, हाँ ये लोग जब बोले कि ननु तथापि सत्रम परित्यज गंतुम न सकते तत्राह, तब ये बोले जच्छत अस्मासु एवं समर्पयत इति अर्थ। जच्छत ने हमको दे दीजिए, हमको दे दीजिए, हम ले जाकर के कृष्ण बलराम को खिला देंगे। चकाराद उदनश्च यद्यपि अन्नम उदनम च, अन्न कह रहे थे च, तो अन्न और उदन दोनों कहे, भात भी दीजिए और अन्न दीजिए। अन्न से तात्पर्य जो है यदि श्रद्धा हो और भी तो पूरी पुआ जो भी बनाए हैं वो भी दे सकते हैं। और भात भी ओदनम च यदि अस्ति सतो अर्थिभ्यो अप्रदानम अधर्म इति भाव, यदि रहते हुए अर्थी को न दिया जाए, याचक को न दिया जाए, भूखे को न दिया जाए तो अधर्म होता है, जबकि आप लोग धर्म भी तमा हैं, अधर्म नहीं करेंगे। अर्थात ऐसा नहीं होगा कि आप नहीं देंगे। धर्म का तत्व जानते हैं। यथवा ननु दानस्य पात्रम विप्रय व न तु अन्य। यदि आप लोग ये कहें कि दान का पात्र ब्राह्मण ही होता है अन्य नहीं, तब ये कहते हैं अन्नस्य क्षुधितः पात्रम। वेद कहता है कि अन्न का भोजन का पात्र कौन है? भूखा। जिसको भूख लगी है वो अन्न का अधिकारी है, वो भोजन का अधिकारी है। इसमें ब्राह्मण आदि का भेद नहीं करना चाहिए, जो भूखा है उसी को अन्न देना चाहिए। और जो भूखा नहीं है, बहुत भारी तोंद फुला करके और बहुत पैसा जमा करके रखा है, आराम से रह रहा है, और उसको खिला दीजिए, ब्राह्मण को वैष्णव को खिला दीजिए, मर रहा है खा करके, है ना, और उसको खिला दो और मारो। भूखे को अन्न देना चाहिए, इस शिष्टाचार में किसी को नहीं पढ़ना चाहिए। इसीलिए कृष्ण बलराम को कह रहे हैं कि वो भूखित है, वे भूखे हैं, इसलिए वो दान के पात्र। इति धर्म धर्म शास्त्रम वा भवद्भिः नित्रां ज्ञायते वा। धर्म वित्तमा शब्द से कहते हैं कि धर्म के तत्व को या धर्म शास्त्र को आप लोग जानते ही हैं। और तम प्रत्यय वित्तम, जानने वाले में सर्वश्रेष्ठ उत्तम जैसे होते, तम प्रत्यय स्तुति अर्थम है वा न तो तत्वतः। वास्तव में उनकी स्तुति करने के लिए, उनको खुश करके भोजन लेने के लिए बोल रहे हैं, उसमें कोई तत्व नहीं। धर्म तत्व ज्ञान है, क्योंकि उनको धर्म तत्व का ज्ञान था नहीं कुछ भी। एवं अग्रे सप्तमा इति चज्ञेय, और आगे भी जब सप्तमा कहेंगे तो उसका भी अर्थ स्तुति के लिए ही समझना चाहिए, कोई फैक्ट नहीं। जब ये लोग कुछ नहीं बोले तब गोपो ने ये सोचा कि शायद ये कह रहे हैं कि अभी भोग नहीं लगा देवता को, ये हवन नहीं हुआ, ये हवन नहीं हुआ, और बस ऐसे गाय बकरी चराने वालों को बैठा कर खिला दिया जाए या दे दिया जाए, बीच में प्रसाद नहीं दिया जा सकता। वो लोग कुछ बोले नहीं, लेकिन गोप अपने से अनुमान कर लिए। लेकिन ये भी पंडित थे गोप लोग, ये कहते हैं दीक्षा या पशु संस्था या सौत्रा मान्यास्त सत्तमा है अन्यत्र दीक्षितस्यापि नानमश्नन ही दुष्यत। कि हे ब्राह्मण, हे संत शिरोमणियों, केवल स्तुति के लिए, हे सत्तव सज्जन शिरोमणय, दीक्षाया पशु संस्थाया, दीक्षा का जिसमें पशु संस्था होती है, और सौत्रामण्याश्च अन्यत्र, यदि सौत्रामणि कार्य जिसमें अभी नहीं हुआ है, उसके अलावा उस दीक्षित व्यक्ति का अन्न खाने में दोष लगता है, पाप लगता है। दीक्षित का अर्थ ये है कि जिसे मान लीजिए कोई व्यक्ति भगवान को भोग लगाया है, यहां भगवान शब्द में केवल दृष्टांत दे रहा हूं, वहां ब्राह्मणों के यहां भगवान का कोई मतलब नहीं था, देवता की पूजा करते थे वो लोग। तो भोग बनाया गया है, रखा गया है, और अभी भोग नहीं लगा है, और तब तक कोई आकर के मांगने लगे तो कैसे देंगे? कहेंगे ना कि नहीं, भोग लगेगा, और भोग लगने के बाद भी पहले सन्यासी ये वो खा लेंगे, तब पहले आदमी खा लेंगे तब पशुओं को दिया जाएगा, है ना? पहले ये खा ले, वो खा ले, वो खा ले, तो ये तो ठीक नियम है। जो भी हो, चाहे यज्ञ हो चाहे कोई हो, अगर कोई नियम के अनुसार है कि भाई अभी प्रसाद नहीं दिया जाएगा, लेकिन ये लोग कह रहे हैं सौत्रामणि कार्य हो गया है, पशु संस्था हो गई है, उसमें ये पशु बलि की बात कर रहे हैं। लेकिन पशु बलि शब्द से घबराना नहीं चाहिए, एक खास कर्म था अगर कोई व्यक्ति दीक्षित है, पूजा में है, यज्ञ में है, तो यज्ञ के समापन के पहले या देवता को हविष देने के पहले किसी को प्रसाद नहीं दिया जाएगा। अगर देवता को देने के पहले कोई खाता है तो उसको महापापी है, पाप लगेगा, दोषी होगा। तो इसलिए यहां कहा गया दीक्षित के अन्न को खाना पाप है। दीक्षित के अन्न को खाना पाप है, लेकिन कब तक पाप है? जब तक सौत्रामणि कार्य पूरा नहीं हो गया है, एक खास कर्म है यज्ञ में, अगर हो गया है तो फिर प्रसाद किसी को भी बांटा जा सकता है। तो ये बच्चे कह रहे हैं कि हम इसलिए मांग रहे हैं कि ये कार्य हो चुका है, अब दीक्षित का अन्न खाने से दोष नहीं लगेगा। तो सब तरह से औचित्य बता रहे हैं कि यहां पर प्रसाद मिलना चाहिए, प्रसाद दीजिए आप लोग, और पर एक शब्द लगा दिए कि यदि आपकी श्रद्धा हो तब, और आपकी श्रद्धा हो तो दीजिए, अथवा ना कह दीजिए, हम अपना रास्ता नापेंगे चलेंगे, यहां समय बर्बाद थोड़े करना है। लेकिन बहुत प्रकार से प्रशंसा किए, पृथ्वी का देवता बनाए, दंडवत प्रणाम किए। जब दोबारा भगवान भेजेंगे इनको, जब पत्नियों के पास भेजेंगे, तो वहां जाकर प्रणाम किए, तो वहां दंडवत प्रणाम नहीं किए। हरीश्वर जी कहते हैं कि भगवान के भक्तों ने बताया कि इन ब्राह्मणों के लिए दंड और स्त्रियों के लिए प्रणाम यही योग्य है। वहां वो लिखते हैं इनको दंडवत प्रणाम किए और उनको केवल प्रणाम किए। तो इस तरह से जब इन लोगों ने मांगा भोजन, कृष्ण बलराम भूखे हैं, ये है वो, इति ते भगवद याच्यम श्रृण्वन्तोऽपि न शुश्रुवुः क्षुद्राशा भूरि कर्माणो बालिशा वृद्धमानिनः। इस प्रकार से जब बच्चों ने साफ कह दिया कि कृष्ण ने मांगा है, श्री बलराम ने मांगा है, तो इति ते भगवद याच्यम, भगवान की याचना को श्रृण्वन्तः अपि न शुश्रुवुः, सुने, कृष्ण बलराम के बारे में कि भूखे हैं, ये है, सुन करके भी अनसुनी कर दिए। इस बात से श्री सुखदेव गोस्वामी क्रोध में इन लोगों को गाली दे रहे हैं, क्षुद्राशा भूरी कर्माण बालिशा वृद्धमानिन, इनका इनकी अभिलाषा क्या थी पाने की, क्या थी? क्षुद्राशा स्वर्ग, वो भी आशा मात्र थी, कभी नहीं स्वर्ग पा सकते थे लोग। जहां भगवान का इतना अनादर हो रहा है, भगवान के डायरेक्ट मांगने पर भी नहीं दिया जा रहा है, जो यज्ञ पुरुष हैं, यज्ञ उन्हीं की तृप्ति के लिए किया जाता, तो श्रील सुखदेव गोस्वामी सीधा गाली देते, क्षुद्र आशा, जिनकी आशा बिल्कुल अल्प है, और आशा मात्रम, ऐसा नहीं है कि वो आशा पूरी होने वाली है, आशा भर है स्वर्ग की। अच्छा, क्षुद्र आशा, प्राप्तव्य बिल्कुल तुच्छ है, और उसके लिए काम भूरी कर्मा, भूरी कर्मा, विशाल परिश्रम, ये काम करो, ये काम करो, ये काम करो, खोदा पहाड़ मिली चुहिया, ये इनकी स्थिति। एक व्यक्ति पूरा पहाड़ खान दिया और लास्ट में क्या मिला? एक मुष्टि चुहिया मिली छोटी सी। तो चूहिया को पकड़ने के लिए पूरा पहाड़ खोद डाला, ये यज्ञ कर रहे हैं, घी जुटाओ, ये करो, ये शुद्धि, ये अशुद्धि, ये अशुद्धि और ये शुद्धि, कितना काम, और धवन कर करके धुआं खा खा करके परेशान, आंख में आंसू आता है, नाक से पानी गिरता है, रोते रहते हैं, और स्वाहा स्वाहा, इसको कहते हैं क्षुद्राशा भूरी कर्मान। भक्ति थोड़ी भी की जाए तो कितना बड़ा फल देती है, वैकुंठ प्राप्त होता है जीव को, पर उस कर्म में श्रद्धा नहीं है, भूरी कर्मान, बहुत भारी भारी कर्म परिश्रम, ये करो ये करो, तो प्राप्तव्य बिल्कुल क्षुद्र और परिश्रम बहुत भारी, और बालिशा मूर्ख है, इनको भक्ति का ज्ञान नहीं है कि भक्ति में थोड़ा भी भक्ति करेंगे तो हमको वैकुंठ मिलता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। न अल्पज्ञ है, बिल्कुल मूर्ख, परंतु वृद्ध मानिना कि हम बहुत जानते हैं, अपने को ज्ञान वृद्ध मान रहे थे, अपने को ज्ञान वृद्ध मानते थे। जब भगवान के भक्त आकर के मांग रहे हैं तो वो सोचते हैं हम इतने बड़े हैं, ज्ञानी हैं। और यही ज्ञानी का लक्षण है कि भगवान को प्रसाद न देना, भगवान को भोग न देना। यदि भगवान की वह जो याचना थी वह इन लोगों को सोचना चाहिए था कि दूसरा नया नया बना करके भगवान को सीधा भेजे, दूसरे देवताओं को भोग लगाया हुआ बात भी नहीं दे पाए भगवान कृष्ण। इसीलिए सुखदेव गोस्वामी सभा में गाली दे रहे हैं, क्षुद्राशा भूरी कर्माण बालिशा वृद्ध मानिन है, बोका और अपने को बहुत बड़ा ज्ञानी समझ रहे हैं। ये अभिमान है कि हम ब्राह्मण हैं, हम बहुत ज्ञानी हैं, हम जागिक ब्राह्मण हैं, यज्ञ कर रहे हैं, शुद्ध हैं। क्या फल हुआ इसका? ते ब्राह्मणा इति इति शीर्षकोक्ति इथम प्रकारेण भगवद याच्याम, कृपा से भगवान ने याचना किया था। इन ब्राह्मणों का भाग्य था कि भगवान मांगे थे, लेकिन श्रीमंत अपि न सुश्रुव, सुनते हुए भी नहीं सुन पाए, नहीं ध्यान दिए। तत्र श्री भगवती अनादरेण ताम सक्रोधम विप्रान निंदती, भगवान का अनादर करने से उन ब्राह्मणों की निंदा कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। क्षुद्राशा क्षुद्रे स्वर्गादौ आशा मात्रम जैसा ते तथा भूता अपि भूरी कर्माण भूरिणी क्लेशाधिकानी कर्माणी जैसन ते जतः बालिशा अल्प बुद्धय तथापि वृद्ध मानिन वृद्धम ज्ञानाधिकम आत्मान मन्यन्ते इति तथा। भगवतः सर्वैश्वर्य परिपूर्णस्य अपि कृपया याच्याम तेनैव अन्नार्थ प्रेषितत्वात् न सुश्रु, भगवान ने मांगा। इसको क्यों कह रहे हैं? क्योंकि भगवान के मांग प्रेरित करने से ही आए थे, तो ये भगवान का ही मांगना था। लेकिन न सुश्रु महाभिमानेन तम नादृतवंत इत्यर्थ, श्री भगवती अनादरेण तान विप्रान सक्रोधम निंदति क्षुद्रेति सार्धद्वयेन क्षुद्राशा अपि भूरि कर्माण तथा बालिशा अल्प बुद्धय अपि वृद्धमानिन, यदा स्वल्प श्रमेणापि भगवत भक्त्या महार्थ सिद्धेत तद अज्ञानाद् बालिशा, थोड़ी भक्ति करने पर भी महान अर्थ प्राप्त होता है, इस ज्ञान से शून्य थे। इसलिए सुखदेव गोस्वामी को बालिश कह रहे, मूर्ख। यदवा स्वर्गाद्यर्थम तावत कर्म श्रुत्वा विधीयत एव तत्रह वृद्धेति, यदि ये प्रश्न किया जाए कि भाई स्वर्ग प्राप्त करने के लिए तो श्रुति के निर्देश के अनुसार इतना कर्म तो करना ही पड़ता है, तब कहते हैं वृद्धेति आत्मानम ज्ञान वृद्धम मन्यन्ते न तु तादृशा इत्यर्थ तत्वार्थ अज्ञानात् सारार्थ दर्शन इति हेतु पूर्व भगवद याच्याम अश्रवणे तेषां बुद्धि विशेषम क्षुद्राशा, भगवान की याचना को नहीं सुने, सुनते हुए भी नहीं ध्यान दिए, नहीं पूरा किए, क्योंकि उनके पास ऐसी बुद्धि थी अर्थात बुद्धिहीन थे। अगर इस पर कहा जाए, मान लीजिए श्रील सुखदेव गोस्वामी से कोई कहे कि भाई ननु शास्त्र विहित देश काल पात्रादिक क्रमम उल्लंघ्य कथम अन्यार्थम अन्नम अन्यस्मय देयम तथा, शास्त्र जो कहता है शास्त्र के विधि देश काल पात्र आदि का उल्लंघन करके किसी व्यक्ति को अन्न भोजन कैसे दिया जा सकता है, कुछ ढंग है न देने का, परोसने का टाइम है, समय है, तब ये कहते हैं कोई भी देश काल ये सब किसके लिए चुना जाता है, भगवान को प्रसन्न करने के लिए, और भगवान ही ये सब मय है। देश समय जजेत इत्यादि उक्ते, देश स्थान समतल होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, जहां कृष्णसार मृग घूमता है वो यज्ञ का स्थान होता है, ये मतलब है। काल बसंत आदि पृथक द्रव्यम बहुविध द्रव्य चरु पुरोडास आदि घी आदि मंत्र तंत्र ऋत्विज मंत्र ऋग आदि तंत्र प्रयोग ऋत्विक होता ते अग्नय देवता यजमानश्च अग्निया देवता यजमान क्रतु यज्ञ और धर्मश्च अपूर्वम यज्ञ का फल जन्मय साक्षात परम ब्रह्म साक्षात परमं ब्रह्म पर ब्रह्म भूतम भगवंतम अधोक्षजम तम श्रीकृष्ण मनुष्य दृष्टिया दुष्प्रज्ञा मर्त्यात्मान ते विप्रा न मेनिरे न आदृतवंत। जो साक्षात भगवान है और देश काल द्रव्य आदि के साक्षात स्वरूप ही हैं, ऐसे प्रभु जो साक्षात सद्गुण से पूर्ण है, छह ऐश्वर्य से पूर्ण है, जो इंद्रियों से अगोचर है, फिर भी कृपा करके मथुरा में प्रकट हुए हैं, पर ये दुष्प्रज्ञा विचारहीन बुद्धिहीन ये ब्राह्मण मर्त्यात्मान मर्त देह को ही महात्मा मानने वाले देहाभिमानिन ब्राह्मणा वयम महांत इति हम ब्राह्मण हैं, हम महान हैं, अपने में इस प्रकार का अभिमान करके तम न मेनिरे भगवान का आदर नहीं किए, कृष्ण का आदर नहीं किया, अहो कितना बड़ा दुर्भाग्य धिक्कार की बात। श्रील सुखदेव गोस्वामी कहते तत्वार्थ में वह उपदिशन निवातेषाम अज्ञत्वम प्रदर्शन सोचन निवाह देश इति द्वाभ्यम पृथक बहुविधम। जितना भी देश चुना जाता है स्थान जग करने के लिए और समय बसंत और विविध घी आदि द्रव्य और देवता यजमान ऋत्विक मंत्र तंत्र, इन सब की सफलता किस बात में है कि भगवान की आराधना हो, और वास्तव में इन वस्तुओं के रूप में भी भगवान ही व्यक्त हैं, उन्हीं की शक्ति है, पर ऐसे साक्षात भगवान जो यज्ञ मूर्ति हैं, यज्ञ पुरुष हैं, यज्ञ के फलदाता हैं, यज्ञ के साक्षात फल वही हैं, और वही प्रभु आकर के मांग रहे थे भोजन सखाओं के द्वारा नहीं दिए, और फिर उन्हीं भगवान को मंत्र द्वारा खिलाते हैं, यहां गच्छ यह तिष्ठ इदम गृहाण ओम विष्णुवे नमः ये कह करके देते। देखिए अज्ञान, साक्षात भगवान आकर मांग रहे हैं उनको नहीं दे रहे हैं, और जुटाते हैं कि ऐसे दिया जाएगा ऐसे दिया जाएगा ये दिया जाएगा। हाँ, वो भी विष्णु को डायरेक्ट नहीं कि इंद्र के रूप में विष्णु है तो इंद्राय स्वाहा या स्वाग्नेय स्वाहा या कह करके देते। इन कामों को किए लेकिन भगवान के लिए प्रसाद भोग नहीं दिए, तो इसलिए उनको गाली दिया जा रहा। नते जदा ओम इति प्रोचुः न नेति च परम तप गोपा निराशा प्रत्यत्य तथोचुः कृष्ण रामय। हे परम तप, हे शत्रुओं को तपाने वाले सुखदेव गोस्वामी ने देखा कि महाराज परीक्षित इसमें क्रोध से भरे हुए हैं, उन ब्राह्मणों के प्रति उनके मन में क्रोध आ गया, इसीलिए वो सांत्वना हे परम तप। जदा ते ओम इति न इति और न इति च न प्रोचु, जब ये ब्राह्मण ओम नहीं बोले, ओम का अर्थ होता है स्वीक अंगीकार, द्योतक अव्यय है यह, दास्याम इति भाव हम देंगे ठीक है, इसको ओम शब्द से व्यक्ति व्यक्त करता था वैदिक काल में, ओम इसका मतलब है ठीक है कोई कुछ मांगने आया तो ओम, ये इसको हां कहिए आज के युग में, हां ठीक दूंगा ओम, ये भी नहीं बोले। और न इति च न प्रोचु, और न न दास्याम, न भी नहीं बोले, ओम नहीं बोले और न नहीं बोले। तदा कुछ देर तक रुके रहे गोप, कुछ बोलेंगे लेकिन वो तो एकदम बकारे नहीं करा उनको कुछ भी, ऐसे स्तब्ध जड़ मूर्ख पड़े रहे वो। तदा निराशा, तो भूख से व्याकुल जो गोप थे और किस मैडम को खिलाने के लिए आना चाहते थे, अब वो निराश हो गए, नहीं मिलेगा। गोपा प्रत्यत्य प्रत्यागता, तब लौट करके श्री कृष्ण बलराम के पास आ गए। तथा निजोक्त्यादिकम विप्रचेष्टितम च रामकृष्णयो उच्चु प्रोचु, इन्होंने क्या कहा था, कैसे जाकर प्रणाम किया था, ब्राह्मणों से क्या कहा था, ये सब, और ब्राह्मणों ने उसके बाद सुन करके क्या किया, सारा आकर के सुना दिया। अब सुना ही नहीं दिया, वो भगवान पर एक प्रकार से रंज भी हो गए कि तुम ऐसे ही फालतू भेजा करते हो। वो तो एकदम बोलबे ना कैलस, ऐसे वो आकर के बच्चे कह रहे तो एकदम बोले ही नहीं। सुखदेव गोस्वामी कहते क्यों नहीं वो कृष्ण को दिए, मनुष्य दृष्टिया, वे भगवान को ये समझते थे कि ये मनुष्य है। अरे मनुष्य भी अगर मानते हो तब भी तो बच्चों को तो देना चाहिए था ना, लेकिन तो हरीश्वर जी कहते मनुष्य दृष्टिया स्वात्मानम पश्यंतस्ते तदा द्विजा अपश्यन कृष्णमप्येवम युक्त मैक्यम दयोर्जता। वास्तव में ये व्यंग कर रहे हैं हरीश्वर जी कि ये असली अद्वैती थे ब्राह्मण, अपने को देख रहे थे कि हम मनुष्य हैं, तो अपने को देख रहे थे इसलिए देखते देखते आदत थी, तो भगवान को भी मनुष्य के रूप में देख रहे थे, तो ऐक्य वास्तव में अद्वैत देख रहे थे, कोई दोष की बात नहीं है। अपने को भी सदा मनुष्य के रूप में देखते, अपने आत्मा को तो पहचानते नहीं कि आत्मा इस देह से परे है, तो अपने को मनुष्य देखते देखते आदत थी इसलिए भगवान को भी मनुष्य के रूप में ही देख, तो आयक्य कर रहे हैं। स्वदृष्टिया तत्स्वरूपेक्षा तद्दृशा वा स्वीक्षणम आद्यम अज्ञानम अंत्यंतु ज्ञानम आद्यम द्विजेशु ही। कहते हैं कि वे अपनी दृष्टि से, अपनी दृष्टि से भगवान को देख रहे थे, तो अपनी दृष्टि तो इनके पास मनुष्य दृष्टि है, इसके अलावा कुछ नहीं थी, अपनी दृष्टि से भगवान को देख रहे थे। और वास्तव में अपनी दृष्टि से भगवान को देखना और भगवान की दृष्टि से अपने को देखना, तो इसमें से आद्यम अज्ञानम अंत्यम तु ज्ञानम, अपनी दृष्टि से अपनी समझ से भगवान पर विचार करना, ये है अज्ञान, और अंत्यम भगवान की दृष्टि से अपने को देखना, उन्होंने जो ज्ञान दिया है भगवद गीता आदि में, ये है ज्ञान। ज्ञानम आद्यम द्विजेशु ही, लेकिन यहां पर क्या हुआ, अंत्यम तो ज्ञानम, लेकिन ब्राह्मणों में आद्य था स्वदृष्टिया तत्स्वरूपेक्षा, ब्राह्मणों में आद्य था मतलब अज्ञान था, ऐसे कविता लिख रहे हैं। स्वदृष्टिया तत्स्वरूपेक्षा स्वदृशा वा स्वीक्षणम आद्यम अज्ञानम अंत्यंतु ज्ञानम आद्यम द्विजेशु ही, ब्राह्मणों में अज्ञान था, इस तरह से श्री कृष्ण को नहीं समझ पाए, सुन करके भी नहीं ध्यान दिए। हरिश्री जी लिखते हैं भगवान ने सोचा, अच्छा ये जो बच्चे आकर के कहे, ये आगे के श्लोक में वर्णन है, आकर के सारी बात कहे, तो इसको सुन करके श्री भगवान हंसे और जोर से हंसे। भगवान को कोई दुख नहीं हुआ है कि अन्न नहीं मिला, वो तो पहले से जानते थे कि नहीं मिलेगा। तो ये बच्चे जब आ करके कहे बहुत निराश होकर के, वहां से वहां पर जाना, वहां मांगना, मिला भी नहीं, तो ऐसे भी थके थे और मानसिक बहुत चोट पहुंची थी उन पर, तो वे तो रो रहे थे कि नहीं मिला, लेकिन भगवान इसको सुनकर हंसने लगे। तदुपा कर्ण भगवान प्रहस्य जगदीश्वर व्याजहार पुनर्गोपान दर्शन लव किम करते। भगवान हंसने लगे। इस दशा में जरा विचार कीजिए, कोई किसी को कहेगा कि जाकर के भोजन मांग लाओ और न दे तो उसको हंसी आएगी। ये भगवान हंस रहे हैं, भगवान किसी भी हालत में भगवान है, हंस रहे। हंसे क्यों, इस पर हरीश्वरी जी उत्प्रेक्षा कर रहे, भगवान हंस क्यों रहे। ऐसा नहीं हो बड़बड़ा कर कहेंगे कि ये पाजी ब्राह्मण कुछ नहीं दिए, ये नहीं दिए। भगवान ऐसे थर्ड क्लास के शब्द नहीं बोलते, भगवान बड़े सुशील व्यक्ति है। हंसने लगे। यद्यपि द्वौ एव प्रति गोपय रुक्तम, गोपों ने जाकर दोनों से बात कही कि वे तो नहीं दिए, ये ऐसे देखते रह गए एक टक, और वो उच्चारण कर रहे थे वेद मंत्रों का, नहीं दिए ये नहीं दिए, दोनों के प्रति कहे कृष्ण राम को। तथापि श्रीराम नहीं बोले, क्योंकि श्री कृष्ण अनादर जाप क्रोध है, श्री कृष्ण का अनादर हुआ इस क्रोध से श्री बलराम जी एकदम बोले गए, क्रोध में हो गए थे। श्री कृष्ण अभिप्राय अज्ञानत्वा, अथवा श्री कृष्ण के अभिप्राय का अज्ञान था बलराम जी को, नहीं समझ रहे थे कि कृष्ण क्या करना चाहते थे, तो श्री कृष्ण के अभिप्राय को नहीं समझ पाए इसलिए भी चुप रह गए कि क्या करना चाहते। करना तो चाहते थे कि उन ब्राह्मणों की पत्नियों पर अनुग्रह करना चाहते थे। श्री बलराम जी को भगवान के अभिप्राय का ज्ञान नहीं था तो इसलिए वो चुप रह गए। किसी विशेष परिस्थिति में समझदार व्यक्ति को चुप रह जाना चाहिए, देखते हैं क्या होता है, तो वो चुप रह गए। तो श्री भगवान ही बोले, भेजे थे यही और अब यही जवाब दे रहे हैं, जिम्मेवारी भी उन्हीं की थी कि अब कुछ जवाब दे। तो जब बच्चों ने उनसे कहा तो श्री कृष्ण सर्वनियंता जगदीश्वर सबके ईश्वर भगवान सर्वेश्वर जो पूर्ण श्री कृष्ण उपाकर्ण उप समीपे वाकर्ण सुने, गोपों की बात को बहुत निकट से सुने। श्रील सनातन गोस्वामी जी लिखते हैं कि चूंकि मांगने पर लोग नहीं दिए थे तो इस बात का प्रचार नहीं होना चाहिए, इसलिए भगवान अगर बच्चे आकर के जो ही कहना चालू किए, क्या तुम भेजे बेकार ब्राह्मणों के पास, लोग कुछ नहीं दिए, तो भगवान शांत करा, हंसे और हंस करके कान के पास से कहने लगे नहीं कोई बात नहीं, समझाने लगे कि बात फैलाने की जरूरत नहीं है कि नहीं मिला है, हंस रहे थे। प्रहस्य दर्शन लौकिकीम गति, लोक में जो गति है दुनिया में उसको दिखाते हुए वे बोले। श्रीपा श्रीधर स्वामी जी कहते हैं कि नहीं कार्यार्थिनो निर्विद्यन्ते, जो कार्य पूरा करना चाहता है उस व्यक्ति को निराश नहीं होना चाहिए। हरिये न हिम्मत विसारिये न हरि नाम, भगवान मानो ये कह रहे कि ये निर्वेद नहीं होना चाहिए कि काम नहीं हुआ, खास करके याचक और कोई मांगने वाला व्यक्ति और कहीं मांगने चला और नहीं मिला तो उससे निर्वेद थोड़े होना चाहिए, वो नहीं मिला वहां नहीं मिला फिर दूसरे घर में मिलेगा, यहां मिलेगा यहां मिलेगा। अगर याचक कहीं निकले मांगने के लिए और पहला घर वाला ही कह दे भागो कुछ नहीं मिलेगा तो क्या लौट कर घर आ जाएगा, वो दूसरा डोर देखेगा, दूसरा दरवाजा वहां मांगेगा, वहां मांगेगा। और याचक कहां नहीं पराभूत होता है, जो भिख मांगा है तो उसकी क्या इज्जत होगी सब जगह, जब हम लोग मांगने वाले हो ही गए तो भाई कहीं नहीं मिलेगा, कहीं मिलेगा, कहीं उल्टा वस्तु मिलने की बात क्या है, सीधा दुत्कारते हैं लोग, देखते हैं लोग एक रुपया दे करके या ठेना दे करके भीख मंगा को कहते चलो भागो यहां से, कहते हैं ना एक रुपया दे करके लगता है पूरा अपना घर ही लिख दिया, चलो भागो, बेचारा फिर भी चुपचाप सहता है। तो भगवान यही दिखा रहे हैं कि याचक को निराश नहीं होना चाहिए, और कहां नहीं याचक का अपमान होता है, यहां तो वो लोग बोले नहीं, ये ब्राह्मण बोले नहीं, दूसरा तो गाली भी तो तक चल हट कहां से आ गया चरवाहा है, आहिर कहां से आकर के और भोजन मांग रहा है। इस ब्राह्मणों के समाज में यज्ञ में तुमको पहले खिलाऊं, कुत्ता कहीं के ऐसे बोलना, तो भगवान तो मानो ये सिखा रहे थे वो लोग तो बड़े अच्छे हैं कि ये नहीं बोले, कितने अच्छे लोग हैं, वो बेचारे बोले नहीं, और याचक तो कहां नहीं तिरस्कृत होता है, बहुत तिरस्कार सहना पड़ता है। तो भगवान हंस रहे थे, लौकिकी गति इसको कहते हैं, लोक में जो याचक की गति है उसको प्रस्तुत कर रहे थे, हंस रहे थे। इससे निर्विवाद इस सत्य प्रकट हो रहा है कि भगवान को उन ब्राह्मणों के द्वारा अपमान करने पर भी कोई भी तिरस्कार का बोझ नहीं हो रहा है, वो हंस रहे हैं, अपनी प्रसन्नता ही व्यक्त कर रहे हैं। भगवान हंसते हुए मानो यह भी कह रहे हैं, यह भी सिखा रहे हैं, ब्राह्मणों का क्या दोष है, अंततः मेरी माया का दोष है प्रभा, मेरी माया से मोहित होकर के वो लोग नहीं दिए, तो इसमें उनका क्या दोष है, दोष कहिए चाहे कुछ भी वो मेरा ही है जब मेरी माया प्रचंड है, मेरी माया की शक्ति है कि इतने बड़े बड़े विद्वान, वेदों के पारदर्शी विद्वान, यज्ञ ब्राह्मण होकर के भी और फिर नहीं दिए, जबकि साधारण व्यक्ति ऐसे भीख मांगने वाले को दे देगा, है ना। लोक में हम लोग रोज देखते हैं, कुछ माताएं हैं उनके पास कोई भिखमंगा आता है, घर में कुछ खाने को दे देती है, जो ज्ञान नहीं है धर्म का उतना, फिर भी दे देती है, और ये धर्म के ठेकेदार लोग धर्म ध्वज इतने बड़े बड़े नहीं दिए, फिर भी भगवान को कोई दुख नहीं हुआ, जो पहले से ही जानते थे कि ये नहीं देंगे तो उनको दुख क्या होगा, वो तो भेजना चाहते हैं गोपों को उनकी पत्नियों के पास। तो भगवान हंस रहे हैं, तजबा कर क्यों हंस रहे हैं, हरीश्वर जी कुछ उत्प्रेक्षाएं लिखते हैं, न मन नाम नि श्रद्धा न च हृदय तोषो अतिथि जने न दानेहा अन्ना नामी है भवति जेषाम कुजनुषाम न तेषाम आज्ञादै हवन मनले मौन मनीषम फलाय स्याद ब्रह्म ध्वनिरपि विभोर ध्वनि हसात। भगवान ने सोचा क्यों हंसे इस पर कहते हैं, भगवान ने सोचा जिस व्यक्ति की मेरे नाम में श्रद्धा नहीं है, न मन नामनी श्रद्धा, मेरा नाम सुनकर के जिसका हृदय खिल नहीं गया, और न च हृदय तोसो अतिथि जने, और किसी अतिथि के आने पर हृदय में खुशी नहीं हुई, और न दाने है अन्ना नाम, और जो कभी अन्न का दान नहीं करता है अतिथि आदि को, भोजन आदि नहीं देता है, उस कुजनुसाम उस व्यक्ति का जन्म धिक्कार है, वो खराब जन्म है उसका, कुजनुसाम कुत्सित जन्म है, ऐसे व्यक्ति के आज्य ही घी आदि के द्वारा अनले हमनम, ऐसा व्यक्ति यदि घी आदि के द्वारा अग्नि में हवन करे या मौन रखे कुछ न बोले, मौन भी एक गुण है, जैसे वो लोग मौन रह गए तो भगवान सोचते हैं कि मौन रात दिन मौन रहना या अग्नि में हवन करना यह बिल्कुल न फलाया, शायद इसका कोई फल नहीं है, ब्रह्म ध्वनि रपी और वेदांत का उच्चारण, वेद के मंत्रों का उच्चारण भी बेकार होता है, मानो भगवान ने अपने हंसी के द्वारा यही ध्वनित किया कि ये सब व्यर्थ है, इसमें कोई दम नहीं है। और यदि मेरे नाम में उत्साह नहीं है, अतिथि जनों के प्रति श्रद्धा और अन्न दान आदि नहीं है, एक और बात से भगवान को हंसी आ रही थी, ध्यान से सुनिएगा धैर्य से। जस्मिन अभ्यास दाढ़्यम वचसी, जस्मिन वचसी अभ्यास दाढ़्यम, जिस बात को बोलने में आदमी का पक्का अभ्यास रहता है, तद अवसाद आस्यतो निष्प्रयत्नम निर्गच्छति, ऐसा तो वह बात उसके मुख से बिना प्रयास के ही निकल जाती है। जिस बात का अभ्यास रहता है, जो बात बोलने का, तो उसके मुख से वो बात बिना प्रयास के निकल जाती है। देखा होगा आपने, जिस व्यक्ति को गाली देकर के बोलने की आदत है तो बिना सोचे समझे भी, बिना शब्द विचार किए भी गाली निकलता रहता है। जिसके मुख से भगवान का नाम निकलता रहता है तो कहीं भी नहाने में, चलने में, ठोकर लगने में हरी हरी हरे कृष्ण वो बोलता रहता है, इसको स्वभाव कहते हैं। तो भगवान ने सोचा कि इनका तो स्वभाव है, इन जाज्ञिक ब्राह्मणों का स्वभाव है ओम बोलना और न भी बोलना। वेद में कई प्रकार के प्रतिषेधक वाक्य हैं जिनमें कहा जाता है न इति न इति, ऐसा नहीं ऐसा नहीं, विधि और निषेध चलता ही है। तो ओम जपने का इनका अभ्यास है जीवन से ही, शुरू से ही, और न भी, न बोलने का भी। लेकिन जब गोप लोग अन्न मांगे तो ओम भी नहीं बोले और न भी नहीं बोले, इस पर भगवान को हंसी आ रही थी कि ये क्या हो गया। जिस बात का अभ्यास है इनको बोलने का, तो दोनों में एक तो बोलना चाहिए था ना, कहना चाहिए था कि हाँ ठीक है दूंगा और नहीं तो नहीं दूंगा। तो भगवान हंस रहे हैं कि यह क्या हो गया। तो उसको श्लोक में हरीश्वर जी कहते हैं, जस्मिन अभ्यास दाढ़्यम वचसी तद अवसाद आश्यतो निष्प्रयत्नम निर्गच्छत्येषु सर्वानुभव इह जद ओम ओम इति वा नोचुरेत नेति वा नोचुरेते तत्कीदृक् स्यादमीषां प्रणय परिचिति मेति मेति वस्त्वा देशस्य लोचनम वा इति अकृत सदैव विस्मया तत्रहासो। ये इनका कैसी है प्रणव परिचिति, प्रणव से इनका परिचय किस काम का है। रात दिन प्रणव ही जपते हैं, ओंकार ही जपते हैं, फिर भी इनके मुख से ओंकार नहीं निकला है, और न भी रात दिन निकलता रहता है, निषेध करना ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना बस। तो ओम भी नहीं निकला, तो ओम से इनका कोई कैसा परिचय है, इतना दिन बोले और फिर भी इसमें ओम नहीं बोले और न नहीं बोले। भगवान को इस बात से हंसी आ रही थी कि बाहरी ब्राह्मण बच्चे आकर के कहे कि अरे वो तो पूछो हाँ ना बोलने ना कहना से लोग आकर के कहे न ओम बोले न बोले। तो भगवान को हंसी आ रही है ये सोच करके। अच्छा, देयम चेन मनसा जदर्थ भी हितं जद तद्देयम अचिरात, जो देना हो अर्थी की मांग के अनुसार अगर देना है तो व्यक्ति को चाहिए कि जल्दी दे दे। ये शास्त्र कहता है, देय नहीं लोकोक्ति है, लोक में लोग कहते हैं, देयम चेद मनसा जदर्थ भी हितम तद्देयम अचिरात, जो देना है तो तुरंत दे दे, और नो चेत यदि नहीं देना है तो सत्वरम एवं नोत्तरम युवक लोकोक्ति रस्ते स्फुटा, तो न तुरंत बोल दे, अगर देना है तो दे और नहीं देना है तो ना बोल दे। लोग में लोग कहते हैं कि देना है तो दो नहीं तो ना बोलो, लोकोक्ति है, लोग बोलते हैं इस बात को, ये स्फुटा प्रकट है। तो कैसे बोलते हैं, ये संस्कृत के शब्द पर ध्यान दीजिए। अगर देयम चेत मनसा जद अर्थी अभिहितम तद देयम एव अचिरात। देना है तो देना है जल्दी, और नो चेत अगर नहीं देना है तो नोत्तरम इयम न उत्तरम दे, न उत्तर दे, ये अर्थ है नहीं दूंगा ये उत्तर दे कहे। पर भगवान ने सोचा कि ये ब्राह्मण लोग इतने बड़े संस्कृत के विद्वान हैं, लेकिन इसका अर्थ उल्टा लगा लिए। न इति उत्तरम न देयम को ये ब्राह्मण लोग ये लिए कि नोत्तरम देयम, अगर नहीं देना है तो नोत्तरम देयम, ये अर्थ लगा लिए। देखिए इनकी बुद्धि, इस पर भगवान को हंसी आ रही है। संस्कृत के महाविद्वान हैं कि न उत्तरम दे, मैंने न कह करके उत्तर दे, लेकिन ये मन में समझ लिया नोत्तरम दे, नहीं देना है तो नहीं उत्तर देना, चुपचाप रह जाना। इसको हरिश्री जी लिखते हैं, देयम चिन मनसा जदर्थवीतम तद देयमेव अचिरात नोचित सत्वरमेव नोत्तरमियम लोकोक्तिरति स्फुटात तस्या संप्रति बुद्धिमद विरिह जन्नैवोत्तरम देयम इत्यर्थ कल्पित इत्यहो सकल वित्तम तज्जहासा चित। भगवान को हंसी आ रही कि साधारण शब्द के अर्थ कोई उल्टा समझ लिए। उल्टा क्या समझ लिए, उनको देना नहीं था ये उत्तर नहीं दिए। देयम वा अदेयम वा, देने जो वस्तु देना है या नहीं देना है, सत्वरम एकम तदुत्तरम देयम, देना है या नहीं देना है, इनमें से एक का उत्तर देना चाहिए। सद्य यो न बुरिया द्वयम अपि सही उपहास्य प्रभो रीति स्पष्टम, जो दोनों में नहीं बोलता है, ये भी नहीं बोला नहीं बोलता है कि मैं दूंगा, और ये भी नहीं बोलता है कि नहीं दूंगा, तो वो भगवान के हास्य का पात्र बनता है। भगवान हंसते हैं, क्या ये सूस कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, बहुत बड़ा कृपण होता है, सूम सूम सूम, हाँ सूम। अरे देना है तो कह दे कि हाँ ठीक है देंगे, कम से कम बोलना चाहिए, दे देरी से ही दे, लेकिन बोले तुरंत कि हाँ ठीक है, और नहीं देना है तो तुरंत बोल दे कि नहीं देंगे। जो मांगने पर नहीं बोलता है ना और हाँ कुछ नहीं करता है, तो भगवान उस पर हंसते हैं, अरे गया बीता दिन। मानो भगवान हंस करके यही बात ध्वनित कर रहे हैं। अब दूसरी प्रथा करें, सर्वांश तो ये जनता प्रतिष्ठा महांत कलिताम वहंती अज्ञान मृतमस्ति तेषाम अहो इति वा हसदच्युत हस। सब तरह से जनता में जिसकी प्रतिष्ठा है और जिसके मन में भावना है कि मैं महांत हूं महान हूं, लेकिन ऐसे बड़े लोगों में अज्ञान भी इतना ऊंचा होता है, ये देख करके भगवान को हंसी आ रही है। जितने महान हैं उतना ही महान अज्ञान भी। योग्यज्ञ ही यज्ञज्ञ ही ब्रह्मज्ञ रपि मना अनाकल्पिता भाविक जन हृदय गता मई गति एवं विधा इति अलम कथे। भगवान ने मानो हंसी द्वारा ये कह दिया कि भले वो योगज्ञ हो, कोई योग का ज्ञाता हो, रे यज्ञ का ज्ञाता हो, या ब्रह्म का ज्ञाता हो, जो गज्ञई यज्ञज्ञई ब्रह्मज्ञई अपि, इनके द्वारा भी मेरी भक्ति प्राप्त होना कठिन है, क्योंकि मेरी भक्ति तो भाव भक्तों के हृदय में रहती है, उसके भाव चाहिए, भले वो जागिक न हो या ब्रह्म वेद न जानता हो योग न जानता। विदज्ञ अपि सर्वशास्त्र विशद प्रज्ञा अपि ख्यातिमत संज्ञा अपि उरु सत्कृता खिल महाजज्ञ कृतज्ञा अपि मत ज्ञाति प्रतिबोध्यमान शरण अज्ञा यदि शिवते अभिज्ञा भक्ति सुखस्य विज्ञ मुनेस्तत्व स्फुटोदय। भले कोई वेदज्ञ है, सर्वशास्त्र विशद प्रज्ञा है, या ख्यातिमत संज्ञा है, उसकी संज्ञा बहुत फैली हुई है, नाम फैला है, महाजज्ञ में प्रवीण है, लेकिन मेरे भक्तों के द्वारा बताए हुए रास्ते पर अगर नहीं चला तो कभी भी वो भक्ति सुख का आस्वादन नहीं कर सकता है। जब भगवान के भक्त जाकर के ब्राह्मण से कह रहे हैं कि ऐसा कीजिए, ये दीजिए, और लोग ध्यान ही नहीं दिए, तो मेरे भक्तों के आदेश पर चलना आवश्यक है। इस प्रकार से उत्प्रेक्षाएं हैं। तो जब गोपों ने आकर के भगवान से कहा तो हंसने लगे, और हंस करके लौकिकी गति दिखाते हुए, कोई बात नहीं, हिम्मत मत हारो, जहां पुरुष लोग पति लोग कोई काम मांग पूरा नहीं करते हैं, तो भगवान ने कहा उनके पत्नी से, माता जी से जाकर मांगना चाहिए, उनमें ज्यादा दया होती है, वो दे देंगे। भगवान बाहर रूप से ऐसा व्यक्त कर रहे हैं, अंततः तो उन्हें जग पत्नियों पर कृपा करनी थी। उन्होंने कहा हिम्मत मत हारो, जब उन्होंने कहा कि जाओ जाओ माता जी लोगों के पास, उनकी पत्नियों के पास, तो गोप कहे फिर वही फिर वही, और वो क्या बहुत भलमानसी होंगी, जब ये लोग ऐसे हैं तो वो तो वैसी ही होंगी ना, हम लोगों को हैरान मत करो। भगवान ने कहा देखो वहां मांगना नहीं है, माम ज्ञापयत पत्नी भी, वहां जा करके केवल बता दो कि कृष्ण आए हैं, बस मांगना नहीं है, हम मांगने को नहीं कहते, केवल जाओ और कह दो कि कृष्ण आए हैं, इतना ही काफी है, और इतना कहने के बाद तुम लोगों को पर्याप्त प्रसाद मिलेगा, भोजन भी मिलेगा, और देखो क्या क्या होता है। अच्छा केवल तुम्हारा नाम बताने से सब हो जाएगा? हाँ सब। तब बच्चे गए। तो फिर उस कथा को दूसरे सिटी में कहा जाएगा। हरे कृष्ण, जय श्री कृष्ण।